बिट्स ऑफ टाइम मिलते हैं तो मैं उसको हमेशा अपने आने वाला जो भी लेक्चर या सेशन है उसके लिए रखती हूँ कि चले मैं अपना जहन बनाऊँ ना। तो इस पूरा वीकेंड, हालांकि बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मेंटली भी एक्यूपाइड थे और वैसे भी, लेकिन मेरे दिमाग में मामलात रहे। उन्हीं रस्तों में से रोज़ गुजरते हैं, कभी दरख्तों के पत्ते अच्छे लगते हैं, कभी उनके रंग अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आज गुजर रही थी तो जो मेरे साथ थे, मैंने दरख्तों की शाखों को एक दूसरे के साथ इस तरीके से उलझा हुआ और उसके बावजूद इतने इत्मीनान से खड़े देखा, तो मैंने कहा ये हैं मामलात। तो आज इंशाल्लाह ताला हम दरख्त के एतबार से शाखों को देखने वाले हैं। पहले वीक में क्या देखा था, सब बोले मिलके रूट्स को, जड़ों को। दूसरे वीक में क्या देखा, तने को, स्टेम को। और इस वीक में क्या देखेंगे, ब्रांचेस को, इंसानी ज़िंदगी के मामलात। शायद आप इसको सोचें तो आप कहेंगे हाँ इसमें वालदैन के हकूक आ जाएंगे एकदम। आप ज़रा सोचें, बल्कि मैं 3 सेकंड खामोश रहकर आपको पूछती हूँ आपसे कि मामलात में हम भला क्या क्या पढ़ेंगे, ऐसे ही रफली। पर शीट तो आपने अब देख ली, नहीं देखी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, मामलात में क्या देखेंगे हम, आपके जिस में लफ्ज़ मामलात से क्या आता है, हकूक़ वाले बात देखेंगे। शाहीन, पेरेंट्स के, एक लफ्ज़ बोलना है सबने, ओके, पेरेंट्स के हकूक। जी सादिया, ख़ानदानी मामलात देखेंगे। जी इधर से समीना, अख़लाक तो नहीं देखेंगे इसमें। जी नेक्स्ट, जी आप आदाब देखेंगे, आप क्या कहते हैं, डिसिप्लिन। जी आप मुबिया, हाँ हमसायों के हकूक देखेंगे। जी आप शाहीन, लोगों से कैसे डील करें। जी आप शाइस्ता, हकूक बच्चों के साथ, पीछे से ससुराल का नाम किसी ने क्यों नहीं लिया, वो भी मामलाती होते हैं ना। तो चलिए देखते हैं, अब जितना आप लेंगे अल्लाह ताला आपको उतना ही ज़्यादा देगा इंशाअल्लाह ताला। शुरू करते हैं, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, रब्बि श्रहली सद्री व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। इस्लाम ए टू ज़ी, रूट टू फ्रूट, तने से फलों तक। आज हम इस सीरीज़ का तीसरा टॉपिक यानी मामलात शुरू करेंगे। हम सब एक दरख्त की तरह इस दुनिया में जीते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने सूरत इब्राहिम की आयत अलम तरा कई फ़दरबल्लाहु मसलन कलीमतन तय्यिबतिन कशजरतिन तय्यिबा, इस आयत को क्राइटेरियन बना दिया कि एक मोमिन इस दुनिया में दरख्त की मानिंद जीता है, अल्लाह की मोहब्बत से बीज पड़ता है दिल में, और उससे फिर ईमान, तवक्कल, अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत, उस पे उम्मीदें, उस पे नज़रें, ऐसी खूबसूरत जड़ें उगती जाती हैं कि उन जड़ों के अंदर से फिर एक तना निकलता है। पहले शुरू में बारीक होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगता है, और वो तना फिर वक्त के साथ इंसान की इबादात में ढलता है। जितना जितनी जड़ मजबूत होगी उतना तना भी अच्छा होगा, और जितनी जड़ें डीप रूटेड होंगी उतना इबादात में भी खुशू और खुदू होगा। और जब इबादात इंसान की एक एक दिन, एक एक दिन के साथ, कुछ चार्ट चाहिए मुझे शीट, इंसान की इबादत जो है वो वक्त के साथ साथ पुख्ता होती हैं। जैसे शुरू में हम नमाज़ पढ़ते तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि नमाज़ है क्या और किस तरह से है, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला उसमें खूबसूरती ले आता है। ये सारा कुछ इबादत के ज़िम्मन में होता है। हर इबादत शुरू में समझ नहीं आती, लेकिन हम बग़ैर समझे बस अल्लाह ताला के साथ मामले को समझते हुए या फ़र्ज़ समझते हुए अदा करते हैं, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि वाकई फिर वो आंखों की ठंडक बन जाती है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कोई भी तना इकट्ठा एकदम सीधा नहीं जाता, बल्कि आगे से मुख्तलिफ तरह से शाखों में बदल जाता है। हर दरख्त की मुख्तलिफ शान है। कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने खजूर के तने से ईमान वाले को नस्बत दी है ना, तो खजूर के तने की अमूमन बहुत सारी शाखें नहीं होती, लेकिन अमूमन जो दरख्त हम ख़ास तौर पे अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो उसमें बहुत सारी शाखें होती हैं। तो ये है एक इंसान का लाइफ स्पैन। कुछ लोगों की ज़िंदगी इतनी सिंपल टू दी पॉइंट होती है कि उसके इर्द गिर्द बस थोड़े से ही लोग होते हैं, यूनी फैमिली कह लीजिए, या अपने आप को कटा छटा रखना, अलग रहना, दो बच्चे, खुशहाल घराना। लेकिन आप कभी आज से 4 साल पीछे के लाइफ स्पैन को देखिए, तो एक ही घर में बाप भी था, बाप के 4 बेटे भी थे, फिर वो बेटे बड़े हुए तो चारों की बहुएं भी उसी घर में आईं। आप में से अक्सर लोगों ने ऐसे घरों में परवरिश पाई होगी कि जहां आपके चचा और ताया की फैमिलियां भी एक ही हवेली में होती थी। कभी हवेली होती है, कभी ऊपर नीचे का घर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़े हालात संवरते हैं तो इंसान एक ही इलाके में 4 एक जैसी कोठियां भी बनवा लेता है। और जो इंसान जितना अपने लोगों के करीब रहता है ना, याद रखिए उतना अच्छा भी लगता है और उतने मसाइल भी बढ़ते हैं। अगर हदें मुतय्यन ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है जॉइंट फैमिली सिस्टम, और अगर हदें मुतय्यन हो तो बहुत सपोर्टिव हो जाता है जॉइंट फैमिली सिस्टम, और फिर होते होते इंसान इंसानों में जड़ता है। फिर यही चीज़ आगे आकर समटाइम हमें मुश्किल देती है, जब हम अपनी कोई पर्सनल तवज्जो चाहते हैं, हम कोई दीन का काम या कोई अपने ज़िंदगी को किसी एक ख़ास ढब पे लेना चाहते हैं, तो वो लोग जो ख़ानदानी निज़ाम में जकड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस करते हैं। एक वीकेंड पे एक के घर शादी है तो दूसरे में दावत है तो तीसरे में किसी की शादी, वो आ रहे हैं तो हम जा रहे हैं। यानी सोशलाइजिंग बहुत सारी होती है, इवन ख़ास तौर पर हमारे इंडिया पाकिस्तान के कल्चर में सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा होती है। फिर उस वक़्त डिफ़ाइन नहीं कर पाता इंसान कि अल्लाह का हक किधर है और बंदों का किधर है। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि ये इस वीक का पूरा और इंशाल्लाह अगला वीक, इन दोनों को अगर आपने बिल्कुल अपने लिए सुन लिया तो आपके ये सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। असल में हमें ये नहीं पता होता कि किसका हक कहाँ तक है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, क्या चीज़ सिला रहमी में आती है और क्या नहीं आती। इसी तरह फिर हमसाए हैं, या तो फिर हम हर वक्त ही उनके घर और वो हमारे घर, और सुबह आलू प्याज मांग रहे तो टमाटर मांग रहे तो शाम को, या फिर ये हाल है कि हमसाया फौत भी हो जाए तो खबर ही नहीं होती इन मुल्कों में। तो ये दोनों तीनों चीज़ें एक्सट्रीम से भरी हुई हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर इसको हम इस शीट की रोशनी में ज़रा सा देखें, जो आपकी वीक 3 की शीट है, क्या ये शीट सबको मिल गई? अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे से देखिए इस्लाम, कितनी चेंज बोलिए, पहली एक बोलिए, एक जितना बोले ना उतना बोले, ज़्यादा नहीं, आगे नहीं जाइए। इस्लाम के कितने हिस्से? पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, हकूकुल्लाह के फिर कितने हिस्से? पहला, दूसरा, अकायद में क्या कुछ है, तर्तीब से बोलिए, सब बोलेंगे मिलके। और इन सब के ऊपर क्या था? ईमान बिल्ला। आप देखिए कि अकीदा कितना गहरा है, अभी भी शीट में देखें तो कितनी डिटेल है इन चीज़ों की ना। तो जब हमारे अकायद पुख्ता हो जाते हैं, हकूकुल्लाह की पहली टर्म पूरी हो जाती है, तो फिर दूसरी चीज़ क्या है? इबादात में क्या क्या आता है, सब मिल के बोले। क्या सिर्फ यही 4 चीज़ें इबादत है? नहीं, ईमान वाले की हर चीज़ इबादत बनती है, ये आज हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए, इस्लाम का दूसरा हिस्सा, आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं? मुआमलात, हकूकुल इबाद हैं। देखिए, अल्लाह ताला के हक के बाद बंदों का हक, ये कितनी अल्लाह की खूबसूरत सुन्नत है कि उसने सिर्फ अपने ही हक नहीं हमसे मांगे बल्कि उसने बंदों के भी हक दिए। कई लोग मुतसब होते हैं, कहते हैं सिर्फ मेरा हक दो। बाद शोहर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, वो कहते हैं किसी को खुश रखो ना रखो मुझे रखो। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं। अल्लाह चाहता तो किसी का भी हक हम पे ना रखता, क्योंकि हमारे इस दुनिया में भेजे जाने में किसी का इख्तियार ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ने अपने साथ बंदों के भी हकूक रखे। अब जब यहाँ हकूकुल इबाद है ना, अगर कभी वक्त मिला तो फिर हकूकुल इबाद के साथ, बल्कि इसी में इंशाल्लाह आखिरी वीक का जो दिन होगा तो हम बंदों के साथ दूसरों के भी हकूक देख लेंगे। एनिमल राइट्स हैं कि नहीं है, ज़मीन का हक है, बेजान चीज़ों के भी हक हैं कि नहीं है। ठीक है, तो हकूकुल इबाद की कितनी ब्रांचेज हैं? पहली का क्या नाम है, दूसरी का क्या नाम है? अखलाकियात। चलिए, आज थोड़ा सा मैं आपको मामलात की पहले इंटरप्रिटेशन देती हूँ। शीट आपके सामने है। लफ्ज़ मामलात आमिला या मुलू से है। आप देखिए कि अरबी ज़ुबान में हर लफ्ज़ का रूट होता है ना, मामलात का रूट क्या होगा? आइन मीम लाम। कुरान पाक में आप एक बात बार बार पढ़ते हैं, इन अल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात। यहीं रुक जाए, गौर से सुनिएगा जो जुमला बोल रही हूँ, ये शायद कभी आपने इस तरह गौर से सोचा भी ना हो। इन अल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, इन अल्लज़ीना आमनू हो गया हकुकुल्ला, वामिलुस सालिहात अब मामला आता है। बात समझ गए? आमिलू का जो रूट है ना, वही लफ्ज़ मुआमला का रूट है। मुआमला, मुफाअला, अरबी ज़ुबान में कुछ बाब होते हैं, ग्रामर की रोशनी में अगर आप देखें तो उसकी रोशनी में जो साउंड होती है ना, जो क्राइटेरियन, जैसे वज़न है, जैसे मुआशरा, मुनाजरा, मुकाबला, हाँ, मुबाहला, उसी तरह से आप देखिए मुआमला, मुआमिला, यानी दो का इंट्रैक्शन ज़रूर होगा इसमें किसी एक के साथ। मुआशरा वो जगह होती है जहाँ 10 से ज़्यादा लोग मिलजुल कर रहे हैं। बात समझ गए? तो क्या पता चला कि मुआमलात में बंदे के ज़ाती अमल नहीं, वो अमल जो दूसरों पे भी असर डालते हैं और दूसरों के साथ मिलके करने की ज़रूरत भी होती है। तो बेसिकली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुख्तसर सी हदीस है, दो लफ्ज़ों की हदीस है। आप अपनी शीट पे साथ साथ नोट करते जाएंगे कि आज हम मुआमलात देख रहे हैं तो अद्दीनु अल मुआमला, यानी ऊपर आप हदीस यहाँ खाली है, यहाँ आप दिखेंगे अद्दीनु अल मुआमला। दीन तो मामलों का नाम है, और ये बात समझनी है तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो की बात समझ लीजिए। किसी ने एक दफ़ा उनके सामने किसी दूसरे शख्स की तारीफ़ की, फ़लाँ बड़ा अच्छा है, फ़लाँ बड़ा नेक है, फ़लाँ बहुत ये वो। कहने लगे ये बताओ कि क्या वो तुम्हारा हमसाया है? कहा कि नहीं, हमसाए में तो नहीं रहता। अच्छा ये बताओ कि कभी तुमने उसके साथ सफ़र किया, कभी कंपेनियन बना सफ़र का? कहा ऐसा भी मौका नहीं आया। कहा अच्छा ये तो कभी तुम्हारा उसके साथ वास्ता पड़ा कोई लेन में कोई देन में? तो कहा ये भी नहीं पड़ा। तो कहा फिर तुम्हें कोई हक नहीं है उसकी तारीफ़ करने का। क्यों? आदमी किसी के सामने कब खुलता है? जब उसका किसी बात में उससे कोई मामला पेश आता है। पंजाबी में कहते हैं कि रा पे आ जाने ते वा पे आ जाने, जब किसी के साथ आपका इंट्रैक्शन होता है फिर। वरना याद रखिए, बेहतरीन दोस्तियां बदतरीन दुश्मनियों पे ख़त्म होती हैं। कब? जब दोनों दोस्त मिलकर कोई कारोबार कर लेते हैं। और शौहर और भाई ने मिलके कारोबार किया और उसके बाद में हुआ क्या कि बीवी को मैके जाने की इजाज़त ही ना रही। कई साल तक दोनों ख़ानदान कटे रहे। ये आपके मेरे घरों की कहानी है। सगे भाई बहन ने रिश्ता किया बेटे बेटी का, किसी वजह से वो रिश्ता नहीं चला, ना हुआ, हो गया तो टूट गया, तो उसके बाद क्या होता है? सब खत्म। उसके बाद फिर इस तरह के हालात हो जाते हैं कि खून के रिश्ते भी पीछे चले जाते हैं। तो असल मेरी आपकी नंबर एक जड़, जड़ ताल्लुक बिल्ला, हमारी ताल्लुक बिल्ला, यानी हमारे ताल्लुक बिल्ला को कह लीजिए कि हमारे अकायद क्या हैं, छुपे हुए हैं ना, अकीदा छुपा होता है ना जड़ की तरह, नहीं पता चलेगा। आपको भी नहीं पता मेरा ताल्लुक बिल्ला क्या है, आपको नहीं पता मेरा ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल तकदीर, ईमान बिल आखिरा है क्या? आपको नहीं पता, ये छुपा हुआ है। आमतौर पे हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक छुपा होता है, ठीक है? चलिए, इबादत की सूरत में कुछ लोगों को दिखने लग जाता है। जाहरी बात है कि अगर आप अभी अजान हो, मिश्री की तरह अजान होगी तो उठ के नमाज़ पढ़ेंगे तो सबको पता लग जाएगा कि है ना ताल्लुक बिल्ला, तभी तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो लिखिए, बहुत अहम बात है, क्योंकि ये बुनियाद ना समझेंगे तो अगली बातें कुछ नहीं है। आपका मेरा असल ईमान या अकीदा छुपा होता है जड़ की तरह, उसका कुछ इजहार हमारे इबादात से हो जाता है। किसी भी दरख्त को अगर जहन में रखते हुए मेरी ये बात सुनकर लिखेंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगी। पूरे दरख्त के मुकाबले में तने की क्या हैसियत होती, कितना को होता है? जैसे आप दूर से रात जाते दरख्त देखे तो सबसे ज़्यादा क्या दिखता है? झाड़ दिखता है, शाखें दिखती हैं, पत्ते दिखते हैं, कई दरख्तों का तना तो छुपा होता है। तो याद रखिए, इबादात हमारे अकीदे और ईमान का बहुत पेल रिएक्शन शो करती हैं। किसी की इबादत को देखकर हम समझ भी नहीं पाते कि वो किस किस्म का इंसान है। उसका अल्लाह से ताल्लुक़ क्या है, उसको अपने मरने के बाद अपने आखरत के बारे में क्या गुमान है, लोगों से मामला करते हुए अल्लाह से डरेगा कि नहीं डरेगा, दुनिया ही खुशी भी है दिल दिमाग में या आखरत की भी कोई तलब तड़प है, ये सारी बातें छुपी होती हैं, लेकिन इन सब की चुगली खाने वाली चीज़ हमारे मामला है। जिस तरह दरख्त को एकदम नज़र से देखे, फर्स्ट साइट में देखे तो दरख्त की हमेशा शाखें, अचानक या किसी भी दरख्त को देखे तो एकदम हमें उसकी शाखें और उसके पत्ते दिखते हैं, फल तो फिर बहुत थोड़ा रह जाएगा। तो याद रखिए, दीनु अल मामला, आप में कितने दीनदार हैं, आपका मेरा अंदर कितना खरा है, कब पता चलेगा, जब किसी से मेरा वास्ता पड़ेगा। चलिए मामला हो गया, मामले भी दो किस्म के होते हैं, अच्छे मामले हो गए, बहुत अच्छी डील हो रही है, शेक हैंड हो रहा है, चाय पियेंगे कि कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन वही कस्टमर चीज़ वापस करने आ जाए तो आप शक्ल ही बदल ले, आंखें ही फेर ले, नहीं जी हमसे तो लिया ही नहीं, हम तो रिटर्न नहीं करते, यहाँ पता चलेगा फिर दुकानदार और खरीदने वाले का आपस का क्या मामला है। इस चीज़ को हर चीज़ में ले आइए। मुलाजिम आज आया घर में, बहुत अच्छी मासी है, ये बहुत अच्छा काम करेगी, वो भी कहती है सबसे अच्छी बेगम तो अब मिली, मामला पड़ेगा और जिस दिन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उस दिन तू तू मैं ये बताएगी मामलात का। शादी होती है, सब खुशी खुशी फूलों और खुशबुओं में दुल्हन को लेकर आते हैं घर में, ये भाभी ये बहू ये अकेला बेटा, लेकिन पता कब चलेगा, जिस दिन मामला पड़ेगा। इसी तरह शौहर बीवी को देखे, याद रखिए कि इब्तिदा में हर मामला अच्छा होता है और बहुत कम लोगों के मामलात पूरी ज़िंदगी उसी नहज पे रहते हैं जैसे वो बनने के वक्त होते हैं। अगर आप, अब आपका मेरा एक क्वेश्चन है अपने लिए, आप जिस दिन किसी से किसी भी रिश्ते में बंधे, अब वो रिश्ते मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, आज रजीर का रिश्ता भी है, मुलाजिम और मालिक का भी है, और फिर रिश्ते दूसरे भी होते हैं, नसब के रिश्ते, सहर के, जिस बुनियाद पे रिश्ते चले थे शुरू में, अगर आखिर तक वैसे रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब के हुस्ने सलूक और एक अच्छे इंसान होने की दलील है। लेकिन अगर एक शख्स है उसके मामले बिगड़े ही रहते हैं, हर जगह बातें, हर जगह लड़ाइयाँ, फिर झगड़े, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर मीटिंगें, फिर उसको बुला, देखिए वंस अ वाइल हो सकता है, एक इंसान है उसका 10 लोगों से सलूक मामला अच्छा है, बट कोई एक शख्स ऐसा है जिससे नहीं अच्छा, इट्स पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। ये ऐसे ही जैसे हम हमेशा सेहतमंद रहते हैं लेकिन फिर कभी कभी हमारे हमें बुखार हो जाता है, लेकिन 2-4 दिन की दवा खाने से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर कोई हर वक्त ही बीमार है, हर वक्त ही उसके ऊपर एक अजीब सी निगाहत हो, तो आप कहेंगे कि अंदर कुछ मामला गड़बड़ है। तो जब हालात वर्स हो जाए फिर मामलों की समझ आती है, और जब देने और लेने के मामले आते हैं, अब मामले को थोड़ा सा अगले स्टेप पे समझिए, अपनी शीट पे देखेंगे तो मामलात के फिर दो हिस्से हैं जो हम इंशाल्लाह यहाँ सीखेंगे। एक है आदाब, मैनर्स, एटिकेट्स, कुछ भी लिख लें, और फिर दूसरी टर्म है हकूक़ व फ़राइज़, राइट्स एंड ड्यूटीज़। हमारे जहन में अमूमन लफ्ज़ मामले या डीलिंग्स के साथ हकूक़ुल हकूक आ जाते हैं, फ़राइज़, औरतों के ये हकूक, मर्दों के ये हकूक, शौहर का ये हक, मर्दों का ये हक, दिस एंड शौहर का ये हक, बीवी का ये हक, और आजिरों के ये और ताजिर जो है उनके ये हक है। याद रखिए हकूको फ़राइज़ से पहले आदाब आते हैं, मैनर्स, एटिकेट्स। आज हम पूरा वक्त एटिकेट्स पे बात करेंगे, और अब अगर आप इन दोनों में से चार अपने पेन से इधर स्टिक्स डाल लीजिए, ये दोनों चीज़ें आपको फिर चार हिस्सों में दिखेंगी। नंबर एक, मामलाते बिन नफ्स, इस पे वन लिख लीजिए, नफ्स के मामलात। फिर नंबर टू, ख़ानदानी मामलात, और थर्ड थ्री, माशी मामलात, और बल्कि इसको फोर पे करें, मैं बोलती हूँ आप इसकी एरोस अपने हिसाब से लगा लीजिए। नंबर वन, मामलात बिन नफ्स, नंबर दो, ख़ानदानी मामलात, نمبر 3 معاشرتی معاملات اور نمبر 4 معاشی معاملات. آپ چاہیں نا تو ایک دائرہ کھینچے, اس کے اندر لکھیے نفس, میرا نفس, ہمارا سب سے پہلا حق اور ہمارا سب سے پہلا معاملہ خود سے پڑتا ہے. کیوں کہا, کو انفسکم و اہلیکم نارا. اگر میں خود کو آگ سے نہیں بچا پا رہی تو میں دوسروں کو کیسے بچاؤں گی؟ میں اپنے ساتھ سچی نہیں ہوں تو میں دوسروں کے ساتھ سچی کیسے ہوں گی؟ اسی طرح سے یاد رکھیے, جس شخصیت کو ہم اکثر بھولے رہتے ہیں وہ ہم خود ہیں. آج آپ کو خود سے پیار ہوگا انشاءاللہ, دیکھیے گا. اس کو کہتے ہیں کہ کریکٹر سپیکس لاؤڈر دین ورڈس. کردار جو ہوتا ہے نا یہ لفظوں سے زیادہ بولتا ہے. 1000 ورڈز بولیں اور اس کی جگہ آپ کا اپنا ایک ایکشن, یہ بھاری ہوگا. اور اسی کو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے کہ خدا تجھے عطا کرے تجھے خدا جدت کردار. جدت کہتے ہیں نیاپن, جدید سے تجدید, کہ اللہ اے مسلمان اللہ تجھے ایک نیا کریکٹر بنا دے, نیا کردار بنا دے. ایک اسکول کا ہم نے کرائیٹیرین لے کر, امریکہ کا ایک اسکول تھا, ان کا ایک سلوگن ہے کہ ہیئر کریکٹرز کاؤنٹس. اس اسکول میں کردار گنا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج یہ مسنگ ہے, پوری پکچر میں سے کردار مسنگ ہے. جب آپ کا اپنا کردار پختہ نہیں تو آپ دوسروں کو کہاں سے دیں گے؟ سیدھی سی بات ہے, جب ڈالا ہی نہیں اندر گلاس میں کچھ تو نکلے گا کیسے؟ بات سمجھ گئے؟ اس گلاس میں پانی کسی نے ڈالا نا تو آپ پینے والے کو مل رہے نا. یہ سارا دن ہم دیکھتے ہیں, برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ, دا بگیسٹ اچیومنٹ آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کریکٹر بلڈنگ تھی, کردار سازی تھی. اور جہاں دکھ اور افسوس کے ساتھ کہوں گی, گرامر بہترین ہو جاتی ہے, تجوید بہترین ہو جاتی ہے, اور فقہی بحثوں میں تو ماہر, لیکن کردار نہیں بن رہا آج عموماً دین کی جگہوں سے. وجہ کیا ہے کہ کردار کو سمجھا, یہ تو کوئی بعد کی بات ہوگی, اس کی کیا حیثیت ہے؟ یاد رکھیے گا, آپ کردار بنا دیں باقی کام خود ہوں گے. سیم چیز یہی آپ کے اپنے بچوں کے لیے. سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ایک ماں کی جو ہے نا, وہ اپنے بچے کی شخصیت کی تعمیر ہے, کریکٹر بلڈنگ. اور انشاءاللہ یہ جو اگلا آپ کا نور اللہ نور کورس ہے, اس کا ایک پارٹ آف دا سلیبس کریکٹر بلڈنگ ہے. ٹائم مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ, لائف مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ جو ہے نا, یہ نہیں آتی ہمیں. ہم آدھے سے زیادہ زندگیاں گزار چکے ہیں نا اپنی, ہمیں ابھی تک زندگی گزارنے کے بنیادی اصول بھی نہیں پتہ. ایک بک اس میں ہم پریزنٹیشنز کی صورت میں پڑھتے ہیں کہ ہیبٹس آف 7 سکسیسفل پیپل. سنی ہوئی ہے یہ بک؟ پڑھا ہوا اس کے بارے میں؟ جی, اللہ اکبر. آپ دیکھیں گے کہ گوروں نے یہ سب کچھ پڑھ پڑھا کے ظاہری کردار کھڑا کر دیا. کسی کے معاملوں میں ٹون نہیں لیتے, گھورتے نہیں ہیں, اپنے کام کو چھوڑ کر دوسروں کے کام میں لکمے نہیں دیتے, اور کام سے کام رکھتے ہیں. اگر یہاں ایک گھنٹے کے $15 دیے جا رہے ہیں, جو پاکستان کے تقریباً 2000 روپے بنے, تو پھر 2000 والا کام بھی تو لیا جا رہا ہے نا. اور اگر ہمارے ملکوں میں واقعی مالک جو ہیں وہ گھنٹوں کے اعتبار سے پے کرنے لگ جائیں, کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا تو اس کا یہ جواب ہے, تو پھر وہ تو بینک کی بینکرپسی ہو جائے گی اس فیکٹری کی. وہ ایک گھنٹہ تو وہ چائے پینے میں لگ دیں گے, اور اس ایک گھنٹے میں تو وہ سگریٹ کے شوق میں باہر کھڑے ہو کے فون ہی اٹینڈ کرتے رہیں گے. کوالٹی کریکٹر بلڈنگ بہت بڑی ہے, تو لہٰذا سب سے ضروری ہے. اگر میں اصولاً دیکھوں نا تو جو اگلے ویک کا ٹاپک ہے نا وہ مجھے پہلے پڑھانا چاہیے تھا, لیکن میں نے کسی حکمت کی وجہ سے وہ ہینڈ پہ رکھا ہے, کیونکہ اس میں سارا اخلاق آتا ہے, اخلاقیات. لیکن اصل بات ہے کہ ہم جب تک اپنے آپ کو نہیں سنواریں گے باتیں نہیں بنے گی. تو اگر آپ دیکھیں تو پہلا دائرہ, آپ ایک دائرہ بنائیں اپنے, ایک اس کا ایک ایک اب چھوٹی سی پریزنٹیشن بھی بنائیں. ایک چھوٹا دائرہ ہوتا ہے سب سے پہلے, یہ ہے میرے اپنے ساتھ معاملے, ہاؤ شوڈ آئی لیو مائی لائف, یہ سارا سیکھیں گے. आपकी ज़िंदगी खुद कैसी होनी चाहिए। फिर उसके बाहर एक और बड़ा दायरा, उसे सेकंड सर्कल, ये है ख़ानदान। आपके बाद आपका ख़ानदान आता है ना, क्लोज सर्कट लोग। फिर एक उसी के बाहर एक और दायरा, उसी कंपस से, उसी यानी उस सेंटर से डालेंगे तो वो है माशरती मामलात। इसमें फिर सोसाइटी आती है, सोशल रिलेशंस। और उसके आखिर में एक बड़ा दायरा लगा लें तो वो मुआशी यानी इकोनॉमिकल मैटर्स हैं। ये आपकी मेरी ज़िंदगी है और इसको ही हमने अब इंशाल्लाह देखना है। अगर अकायद दुरुस्त होंगे तो दुरुस्त इबादत पैदा होंगी, यानी आप लिख लीजिए इज़ इक्वल टू दुरुस्त अकीदा विल प्रोड्यूस दुरुस्त इबादत। और जब अकीदा भी दुरुस्त हो, इबादत भी दुरुस्त हो, तो अखलाकी तरबियत खुद ब खुद होने लगती है और हमारे मामलात दुरुस्त होने लगते हैं। फिर लेन देन सीधे होंगे और असल दीन भी यही है, अद दीन अल मामला, दीन मामलों की दुरुस्तगी का नाम है। आप किसी भी सोसाइटी को दीनदार सोसाइटी कब कहेंगे? ठीक है, वहाँ 5 वक्त अजान की आवाज़ आए, ये भी दीनदार सोसाइटी है, लेकिन दीनदार सोसाइटी वो होती है कि जहाँ लोग किसी को चीट नहीं करते, धोखा नहीं देते, जहाँ लोग दिखाते कुछ और करते कुछ नहीं है। हमारे जहन में आते हैं दीनदार सोसाइटी वो जहाँ लोग हाथों में तस्बीहें लिए हुए किसी कोने में बैठे अल्लाह अल्लाह की तस्बीह अलापेंगे। ये गलत तस्वुर है। याद रखिए असल दीनदारी ये है कि बेखटक अपना माल आप किसी को दे दें कि जाओ मेरा माल इन्वेस्ट कर दो, तो आपको कोई खौफ ना हो कि ये मेरा पैसा हड़प कर जाएगा, खा जाएगा, और सारे नुकसान मेरे नाम डालकर सारे घाटे के सौदे मुझे दे के एंड पे कहेगा आपका भी डूब गया, कुछ भी नहीं बचा। ये दीन नहीं होती। और दीन ये है, जैसे सहाबा में से कोई अगर जिहाद पे जाता था ना या हज पे जाता था, तो अपने बच्चों और घर वालों को हमसाए की कस्टडी में दे जाता था। भाई मैं जा रहा हूँ, ये मेरे छोटे बच्चे बच्ची, इनकी सरपरस्ती करना, इनकी तरबियत करना, मैं अल्लाह के बाद तुम्हें सुपुर्द करता हूँ। और उसको एतमाद होता था कि मेरा हमसाया मेरे से ज़्यादा मेरे घर वालों का ख्याल रखेगा। और याद रखिए जो दीनदार सोसाइटी होती है वहाँ बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। ताजिरों को, बैंक ओनर्स को, मनी मैटर्स में वो ये नहीं कहते कि हम इधर जा रहे हैं तो हमें पुलिस चाहिए और हमारी हिफाजत, हमारी जान माल का खतरा है, वो माल को छुपा छुपा कर नहीं रखते। और याद रखिए कि दीनदार माशरा वो होता है जहाँ अदल होता है, जहाँ हकीकत में लोगों को ये पता है कि अगर फातिमा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करेगी तो उसका हाथ भी कटेगा। याद है कबीला महजूमिया की औरत फातिमा ने चोरी की तो उस पे लोगों ने उसामा को नबी सल्लम का सिफारशी बनाकर भेज दिया कि आपको इनसे बड़ा प्यार है तो चलो सिफारिश कर लें कि इस औरत को छोड़ दें। तो आप गुस्से में आ गए और कहा अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटता। ये दीनदार सोसाइटी है, ये है इज्तमाही अदल। इसको आज इस्लाम के नाम पर आम करने की ज़रूरत है। नामों से कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने सूरत हदीद आयत 25 में भी यही बात कह दी ना कि हमने लकद अरसलना रसूलना, हमने भेजे अपने रसूल खुली निशानियों और दलीलों के साथ। क्यों भेजा? ताकि सब मिलकर ली यकूम अन्नास बिल क़िस्त, के लोगों में इंसाफ कायम करें। तो बात यह है अल्लाह ने एक मिज़ान आपके मेरे अंदर रखा है। आज यहाँ बैठकर खुद से एक एक चीज़ पे हमने खुद पूछना है, मेरे किरदार में क्या कमी है? हमेशा मुझे दूसरों पे क्यों गिला होता है? फुला मेरे माइंड के साथ नहीं चलता, मेरी उससे केमिस्ट्री नहीं मिलती, मेरी पिच नहीं मिलती, ये तो कभी सुने भी नहीं थे लफ्ज़ हमारी बड़ों ने, फिर भी बड़े अच्छे जी कर गए। आज दो लोगों की साथ रहते हुए क्यों नहीं बनती? भाई बहन एक घर में इकट्ठे नहीं रह पाते, एक कमरे में दो भाई नहीं रहते। एक माँ ने अपना अंदेशा जाहिर किया कि अकलौती बेटी है, गम यह है कि शादी की उम्र करीब आ रही है, लेकिन ये किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करती, ये अपना तकिया नहीं शेयर कर सकती, ये बाथरूम शेयर नहीं कर सकती, ये अपना कंप्यूटर शेयर नहीं करती, ये आगे जाके करेगी तो क्या करेगी। ये माँ का गम था, आज ये हकीकत है। आज बच्चियाँ ये क्यों कहती हैं कि शादी तो करेंगे लेकिन बस तुम अपनी जगह मैं अपनी जगह, और शादी तो करेंगे लेकिन बच्चे नहीं होने देंगे। ये क्या ताल्लुक है? ये कौन सी नस्लें हमने तैयार की? यकीन करें ये जो हम पढ़ने रहे ना, इसमें आपको तरबियत के 101 नक्श भी दिखेंगे, क्योंकि हम इनको छोड़कर बच्चों की कमरों पे किताबों के बोझ लाद के स्कूलों में भेजने का नाम तरबियत समझ रहे हैं, तो तरबियत ये नहीं होती। असल ये है, मैं किसी के साथ ज्यादती ना करूं, मेरी पकड़ ना हो। आप कहते हैं कि अबू जर अपने गुलाम को कुछ सख्ती के साथ पेश आ रहे थे, तो अल्लाह के नबी करीब से गुजरे और कहा, अबू जर क़यामत के दिन हिसाब होगा। कहा अल्लाह के नबी कैसे? कहा तेरे गुलाम की गलतियां भी तोली जाएंगी और तेरी दीवी सजा भी तुलेगी। अगर इसकी गलतियां ज्यादा हुई और तेरा रिएक्शन कम हुआ तो तू बच जाएगा, लेकिन अगर तेरी दीवी सजा ज्यादा हुई तो फिर ये तेरे ऊपर वहां जाकर दावेदार होगा। इतना डर गए कि फौरन खड़े खड़े कहा कि गुलाम जा, मैं तुझे आजाद करता हूँ। ये मुआशरा है दीनदार, ये किरदार है। लोग घबरा जाते थे इस बात पे, हाय मुझसे इसका हिसाब होगा, मैं इसको अफोर्ड नहीं करता। दो माँ बेटियां आई और मोटे मोटे कंगन पहने हुए, अल्लाह के नबी ने पूछा इनकी ज़कात देती हो? कहा नहीं दी, जब से लिए तभी से नहीं दी, तब से नहीं दी। कहा जाओ हिसाब करके इसकी ज़कात दो। अच्छा ये पकड़े उतार के दीजिए, ये आप रखे, मेरे से नहीं हिसाब होता, मैंने अल्लाह को दे दिए। ये होता है असल में दीनदार इंसान, मुहासवे का डर। इंशाल्लाह अभी इस पर बातें बहुत सारी होनी है, लेकिन याद रखिए ये मौजू कितना अहम है, आपको अंदाज़ा हो रहा है। आवे कावा बिगड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि आज ये दीनदारी नहीं है। ये नहीं कहना पड़ता मेरे ये हक, और याद रखिए दीनदार मुआशरा वो होता है कि जहाँ लोगों से हक मांगने नहीं पड़ते, देने की फिक्र है। साहबा बार बार आकर पूछते थे, अल्लाह के नबी ये बताइए हमारी बीवी का हम पे क्या हक है? हम क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी ज़रा बताएं बीवियों के क्या हकूक है? देने वाला पूछता था, लेने वाला नहीं पूछता था। और यकीन करें कि आज ये हालात है, किसी एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, दुनिया में नहीं है, तो मैं उनकी एक बात पढ़ रही थी उनकी बुक में। कहते हैं कि मैं एक दफ़ा कहीं से गुज़रा तो एक बूढ़ा शख्स था, रेड़ी लगा के फल बेचता है, मैं उसको अक्सर ही देखता था। तो वो अपनी रेड़ी के ऊपर कुछ सेब लगा कर ना तो फैला रहे और साथ अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा और उसकी दाढ़ी तार रहा। तो मैं उनके पास खड़ा हो गया, मैं अक्सर ही उनसे बात करता था, तो मैंने उनसे कहा कि बुज़ुर्गों क्या हुआ? तो रोते रोते कह रहा है कि आज मेरे बच्चों की रोटी चली गई, आज मेरे बच्चों की रोटी चली गई। कहा क्या हुआ? कहा मैं गरीब बंदा हूँ, रोज़ कमाता हूँ और उसमें कुछ पैसे बचा कर अगले दिन के लिए एक फलों की पेटी ले आता हूँ और सारे दिन में वो बिकती है। शाम को उसी पेटी में पैसों में से मैं आटा खरीदता हूँ और अपने बच्चों को खिला, रोज़ की रोटी रोज़ की लेता हूँ। कल के पैसों में से मैंने आज जब सेब खरीदे तो उसने मुझे जो दिए मैंने खरीद लिए। अब आके यहाँ पलटे हैं तो ऊपर की तह पे ठीक सेब है, नीचे सब गले हुए सेब है, तो मेरी रोटी छीन ली, आज मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे? ये है असल में बेदीन मुआशरा, धोखा। और आज आप इस नाम से देखें तो फिर देखें कितने को मुसलमान मुल्क है और कितना को इस्लाम हमारे अपने मुल्कों में। हमने 70 साल बाद जश्न मनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन उस जश्न में से हो क्या रहा? आज हर वक्त बहस ये है, इनके हकूक, उनके वो एजिटेशंस, हड़तालें। साहबा को हड़तालें नहीं करनी पड़ती थी, यकीन करें तकरार इस बात पे होती थी कि तुम जो माल मुझे दे रहे हो ये कम कीमत दे रहे हो, ज़्यादा लो, तुम गलत दे रहे हो। एक शख्स ने दूसरे से ज़मीन खरीदी, खैर जब जिसने खरीदी जब उसने उसमें कुछ खुदाई के लिए बुनियादें खोदनी चाहिए तो उसमें से एक सोने का बॉक्स निकल आया। अब वो सोना था उसमें, पहले दौर में आपको अंदाजा है कि लोग जमीन में दबा देते थे। अब क्या किया होगा? पहले शख्स के पास गया, कहने लगा मैंने तुमसे जमीन खरीदी है, सोना नहीं खरीदा, तुम अपना खजाना वापस ले लो, ये तुम्हारी अमानत है। कहने लगा भाई मैंने तुम्हें जमीन बेची थी। अब जरा दूसरे की सुनी, दोनों के दिल भरे हुए हैं, पेट भरे होते हैं ना। कहने लगा बात सुनो, मैंने तुम्हें ज़मीन बेच दी और अल्लाह का नबी कहता है जो बेच दो वो तुम्हारा नहीं रहा। मैंने कुछ ज़मीन को अंदर से खोदा था कि इसमें क्या निकलेगा, इसमें कैल्शियम है, फलां फलां है, नहीं है, ये मेरी नहीं है, मैं नहीं ले सकता, मुझे इजाज़त नहीं है इसकी, ये तुम्हारी, अब तुम जानो खजाना निकले या उसमें जो भी निकले मैं तो नहीं करूँगा। कहा अच्छा ये तो फिर ना, दोनों चलते गए, मामला काजी के पास चला गया। काजी को उसने, वो कहता मैंने नहीं लेना, वो कहता मैंने नहीं लेना, आज का काजी होता कहता हमें ही दे जाओ। नहीं, कहने लगा ये बताओ कि तुम्हारा बेटा है कोई? एक ने कहा मेरा बेटा है, दूसरे से कहा तुम्हारी कोई बेटी है? कहा है। कहा किस उम्र के? कहा जवान हो रहे हैं। कहा जाओ दोनों का रिश्ता कर दो और ये माल उन पे लगा दो, उनको दे दो। लियकूमन्ना सुबेल किस्त, ताकि लोगों में अदल कायम हो जाए। तो याद रखिए मुस्लिम माशरा वो है मुतालबात की जगह अदायगी हकूक पर जोर होता है। आज आप देखिए कि कुफर पे मबनी, बेदीनी पे मबनी गैर मुस्लिम रियासतें पनप रही हैं, राइट चाहे वहाँ इस्लाम है कि नहीं, वहाँ दीन है कि नहीं, मज़हब है कि नहीं, लेकिन वहाँ आप देख लीजिए कि इंसाफ है, अदल है, कोई किसी का हक मार के जाए तो किधर जाए। पूरी इस्लामी तारीख खोल कर देख लीजिए, 1400 साल इस्लामी तारीख में कभी भी हड़ताल नहीं हुई, एजिटेशन नहीं हुई। जागीरें भी थी, कारखाने भी थे, ज़मीनें भी थी, कोई स्ट्राइक्स नाम का तस्वुर नहीं था कि किसी ने कारखाना लगाया और मज़दूरों को हकूक ना दिए हों और मज़दूर जो वो काम करें, पैसे ले लेकिन काम ना करें। आज हर आए दूसरे तीसरे दिन हमारे साथ के, और किसी इंस्टीट्यूट, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज़ दुनिया में आप जिसको देखें, उसका स्मूथली चलना इस बात की दलील है कि लियकूमन नास बिलक़िस्त, हक ना मारें, किसी की मुरव्वत को आप उसका उसके दिल की मर्ज़ी ना समझें। हर जगह अगर 8 घंटे काम करके आता है ना, तो उसको बीच में टाइम मिलना है, खाने का भी, पीने का भी, नमाज़ों का भी पढ़ना है। फिक्र ये लगी हो कि पैसे ले लिए हैं लेकिन हक अदा किया कि नहीं किया। तो बहरहाल अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ऐसा बना दे, ऐसा किरदार बना दे कि जिसमें हम वाकई ऐसे बन जाएं, अदरवाइज़ देर इज़ नो वे टू सर्वाइव। तो जब हम मामलात को देखते हैं ना, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ आदाब है, अदब, मैनर्स। मैं चंद जुमले बोलूँगी इस्लामी आदाब के, ये आप अपनी शीट का जो बॉक्स है, बॉक्स है उसके अंदर भी नोट कर सकते हैं। छोटा छोटा लिखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ लिखेगा। इस्लाम में मैनर्स की क्या हैसियत है? देखिए, किसी के हकूक़ और फ़राइज़ तो बाद की चीज़ है, वो तो बहुत छोटी चीज़ होगी। सबसे पहले आप अपने मैनर्स ठीक कीजिए। आप बदतमीज़ी से बात करेंगे, आप हकूक़ से ज़्यादा भी लोगों को दे दें, फिर भी बात नहीं बनेगी, लोग खुश नहीं होंगे। कई लोग हैं पैसे से तोल देते हैं बीवियों को, बात करने में बदतमीज़ है, ओए तोए करके बात करते हैं, इंसल्ट कर देंगे किसी के सामने, बीवी को खुशी नहीं देगा वो डायमंड का सेट जो आप एनिवर्सरी के नाम पर ले आए। आप ज़रा अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल ठीक किया करें, ये मैनर्स होते हैं। तो चंद बातें कि इस्लामिक मैनर्स की हमारे असलाफ़ की निगाहों में क्या कदर थी। मैं नाम बोलूँगी, नाम आप ना लिखिएगा, मैं क्यों बोलती हूँ ये मैं आपको अभी भी बता दूँ। बहुत सारे रेफरेंसेस दिए ना इस कोर्स में, ये शरह सदर के लिए, नहीं लिख सकते ना लिखा करें, मैं आपको दे दूँगी बाद में, आपको ग्रुपिंग में मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग सुन के सारी उम्र लिखते रहिए। इस वक्त रूह पे बात करें, लेकिन मैं ना बोलूँगी ना तो हो सकता है किसी बात को सुन के आपको लगेगा कि ये इनकी अपनी बात है, और दूसरी बात है कि फिर किलो काल रह जाती है ना। तो रेफरेंसेस दीन का एक खुलासा है, हदीस पढ़ेंगे तो इसकी अहमियत समझ आएगी। तो जो मैं नाम बोलती हूँ ये आप ना लिखा करें, डोंट वरी। मैं वैसे भी कह दूँ किसी आलिम ने कहा, किसी बड़े ने कहा, इट्स ओके, बट आपको ये फील हो कि जो इल्म लिया जा रहा है वो सही है। तो हबीब बिन शहीद एक बुज़ुर्ग थे, कहने लगे अपने बेटे से, अपने बेटे फुकहा और उलमा की सोहबत इख्तियार करो, इनसे इल्म सीखो और इनसे अदब सीखो, बेशक ये मुझे गुफ्तगू की कसरत की बनिस्बत ज़्यादा महबूब है। बुक है अरबी की, बहुत ही खूबसूरत है, तस्करतुस्सामे वलमुतकल्लिम, उसकी जिल्द 2 में ये बात मौजूद है। क्या पता चला, यानी इनका सबसे अच्छा जुमला क्या है कि गुफ्तगू की बनिस्बत अदब सीखना। इसी तरह इमाम ज़ाहबी कहते हैं, इमाम अहमद की मजलिस में 5,000 लोग जब हाजिर होते थे, सोचिए आज है ऐसी कोई क्लास जिसमें 5,000 लोग हों, वो तो अखबारों में आ जाएगा और फिर वो लाइक्स में चले जाएंगे। नहीं, हमारे असलाफ की मजलिसों में लाखों लोग भी होते थे, आपको ये बात पता? इमाम अबू हुरैरा रहमहुल्ला किसी शहर में आके गुजर जाते थे ना, लाखों का मजमा होता था। इमाम बुखारी रहमहुल्ला एक शहर से उठ के दूसरे शहर में जाते थे, लाखों लोग, 90,000 लोगों को तो गालिबा, अगर मैं अपने याद से बता रही हूँ, 90,000 लोगों को जो मेरे फिगर है जहन में, इमाम बुखारी ने बकलम खुद 1-on-1 बेस पे बुखारी सिखाई थी। आप ये ना सोचें कि आज बहुत शागिर्द हो गए, आज तो आटे में नमक है, आज तो कदर ही नहीं, मसरूफ़ हैं, बिजी हैं, ये था वो था। कितने लोग हैं जिनको ये सीखने की तलब है, तो कितने सीखते हैं? क्या सब सीखे बैठे हैं घरों में? मजबूरियां तो देखिए, रोना आता लफ्ज मजबूरी सुनकर। कल का दर्स किसने सुना सुबह में जो हुआ घर से, और ना सुनने की भी बहुत सारी मजबूरियाँ होंगी। मैं सोच रही थी कल दर्स के दौरान भी, मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह करे हर बंदे के कान तक ये लेक्चर पहुँचे, कोई एक जुमला ज़रूर उसके लिए होगा। हम मजबूर लोग हैं, और ख़ास तौर पे इल्म के मामले में तो हम बड़े ही मजबूर हैं। अल्लाह हमारे लिए आसानी करे। तो इमाम अहमद की मजलिस में 5,000 लोग हाजिर होते थे, 500 अफराद लिखते थे, और बाकी इनके तौर तरीक़ों से अख्लाक और अदब सीखते थे। ये यासिर अलामुल नुबला बड़ी प्यारी किताब है, ये भी उसी के पेज 3316 11 पार्ट है उसमें। यानी ज़्यादा लोग क्या सीखते थे, आदाब। कापियों पे नोट्स लेने तो हर एक के बस में नहीं होते, लेकिन आदाब तो सीखते थे। चलना, फिरना, उठना, बैठना, बात करना, ये एक एक चीज़ सीखने वाली होती है। इसी तरह मुखलत बिन हुसैन ने इब्ने मुबारक से कहा, हमें बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की बनिस्बत बहुत ज़्यादा अदब की ज़रूरत है। तज़किरतुस्सामे में भी ये बात मौजूद है। इब्ने सीरीन कहते हैं, असलाफ, असलाफ मीन इंसेस्टर्स, ओल्ड पीपल, आदाब को ऐसे सीखते थे जैसे इल्म को सीखते थे। इमाम शाफ़ी से कहा गया, आपकी आदाब के लिए ख्वाहिश कैसी है, यानी आपको आदाब सीखना कैसा लगता है। कहने लगे, मैं उसमें से कोई हर्फ सुनता हूँ जिसे मैं नहीं सुन पाता, तो मेरे आज़ा को मोहब्बत होती है कि वो इसे सुने, फिर इस नेमत से फ़ायदा उठाएं। यानी इल्म सीखते वक्त मैं इतना कॉन्शियस होता हूँ कि मेरे जिस्म का हर उज़्व सीख ले। और कहा गया कि आपकी अदब लेने के लिए तलब कैसी है। कहने लगे, जैसे किसी औरत का एक ही बच्चा हो और वो गुम हो जाए, तो इस औरत की तड़प की तरह आदाब की तलब है। तज़किरतुस्सामे वल मुतकल्लिम, यानी जैसे अकलौते बच्चे को माँ ढूंढती है ना, मैं इस तरह अदब ढूंढता हूँ। याद रखिए, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। सीधी बात, 100 बातों की एक बात है। आज हमारे अपने मैनर ठीक नहीं होते, हम दूसरों को क्या देंगे। हम कहते हैं लफ्ज़ बोलने का नाम उस्ताद बनना है। उस्ताद इल्म नहीं देता, इल्म तो किताब देती है, उस्ताद तो इल्म की भूख देता है। इस्लाम तो मोटिवेट, उस्ताद तो ये मोटिवेटर होता है, वो तो रग़बत देता है, वो तो इल्म सीखने की ख्वाहिश पैदा करता है। असल चीज़ उस्ताद से जो सीखने की होती है वो अदब सीखना होता है। फिर इसी तरह से इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में कहते हैं, अबू बकर बिन, एक आलिम थे, उनका कॉल है अबू बकर बिन अल मुतवई, कहते हैं कि मैं अबू अब्दुल्ला, यानी ये उनकी कुनियत थी इमाम अहमद बिन हम्बल की, कहते हैं मैं उनके पीछे 12 साल तक पढ़ा रहा। 12 साल तक मैं इमाम अहमद के साथ रहा। वो अपनी औलाद को अल मुस्नद पढ़कर सुनाते थे। पता है ना आपको मुस्नद इमाम अहमद कितनी जिल्दें हैं, कोई बता सकता है आप में से। मुस्नद इमाम अहमद हदीस की मुस्तनद किताबों में से किताब है, कितनी जिल्दें हैं इसकी। 25 जिल्दें हैं, और बिलीव मी विदाउट एनी एग्जेजुरेशन, ये सामने का जो कर्टन रॉड है ना, वहाँ से शुरू करके ब्रेक में देखिएगा, इतनी जगह में वो 25 आती हैं, इतनी मोटी मोटी जिल्दें हैं। लाइब्रेरियों में जाकर देखे, वहाँ अल मुस्नद इमाम अहमद, इतनी बड़ी किताब है, और अपने बच्चों को पढ़कर सुनाते थे। उनकी जिंदगियां और अपनी देखें तो हमें तो अपने बच्चों पर रोना आना चाहिए कि उनको माँ बाप कैसे मिले। असल बच्चे बुरे नहीं हैं, माँ बाप है, शागिर्द बुरे नहीं हैं, उस्तादों में आज वो फोकस और वो डेडिकेशन ही ना रही। बहरहाल कहते हैं कि वो तो उनको पढ़कर सुनाते थे, मैंने इनमें से एक भी हदीस नहीं लिखी, मैं इनके तौर तरीक़ों और अख्लाक को देखता रहता था। बात समझ गए। इमाम शाफ़ी कहते हैं, जो इस बात से मोहब्बत रखे कि अल्लाह इसका दिल खोल दे या इसको रोशन कर दे। किस किस का दिल करता है आपका, आप में से रोज़ दुआ पढ़ के बैठते हैं ना, रब्बे श्रह ली सदरी, ये दुआ ही है या सिर्फ लिप सर्विस है। दिल चाहता है दिल खुले तो क्या करे। नंबर एक, इस पर लाजिम है कि नंबर एक खलवत इख्तियार करे, खलवत तन्हाई, कम खाए। नेक्स्ट, बेवकूफ़ों के साथ मेलजोल छोड़ दे, क्योंकि वो उसको भी वैसे ही बना देंगे। और ऐसे इल्म वालों से बुग़्ज़ रखे, देखिए इल्म वालों से बुग़्ज़, जी जिनके पास इंसाफ और अदब नहीं। मुकदमतुल मजमू शरौल मुहज़्ज़ब की का ये रेफरेंस है। क्या बात समझ आती है कि शरह सदर होता ही इन बातों के बाद है। फिर हबीबुल जलाब कहते हैं, मैंने इब्ने मुबारक से सवाल किया, इंसान को कौन सी बेहतरीन चीज़ अता की गई। उन्होंने कहा, तबई अक़ल, यानी अक़ल हो। कहा, अच्छा अगर वो ना हो तो। कहा, हुस्ने अदब। कहा, अगर वो भी ना हो, यानी किसी के पास अक़ल भी नहीं है, अदब भी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जिससे फिर तुम मशवरा ले सको, यानी किसी को अच्छा मशवरा दे दिया करे। कहा, अगर वो भी ना हो तो कहा तवील खामोश रहे, फिर चुप रहे वो बंदा। कहा अगर ये भी ना हो तो कहा फिर जल्द आने वाली मौत का इंतजार करे। यानी ऐसे बंदे को मर ही जाना चाहिए कि जिसके पास इन चारों में से कोई एक खैर भी नहीं। सैरुल अलाम नबूवा की रिवायत है, असलाफ में से किसी ने अपने बेटे से कहा है, मेरे बेटे अगर तुम अदब का एक बाब सीखो तो ये मुझे ज़्यादा महबूब है इससे कि तुम इल्म के 70 अबवाब सीखो। तज़किरतु सामे। इब्ने मुबारक कहते हैं, मैंने 30 बरस आदाब सीखे, मैनर सीखे पहले। यानी ऐसे जैसे आप कोई कोर्स करें तो आपको पहले 30 साल तक रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए जाएं कि हाउ यू शुड बी अ स्टूडेंट, कैसे चलना, कैसे बोलना, रूल्स एंड रेगुलेशन। और फिर 20 बरस तक इल्म सीखा, और पहले अदब सीखते थे हम, फिर इल्म सीखते थे। सैरुल्लाम नबूवा कितने साल लगे होंगे? 50 साल। हम में से कितने लोग सिर्फ 30 साल रूल्स एंड रेगुलेशन सीखें? हम कहते हैं जी उंगली पर रख के बताएं, टाइम कितना, 1 मिनट ऊपर होने लग गया, आपको जाना चाहिए, और 1 मिनट ऊपर हो गया, क्लास नहीं शुरू हुई, और ये हो गया, और हमारे जाने का वो ब्रेक वक्त पे नहीं। यानी ये सारा कुछ सीखना। देखिए इल्म कब लेते हैं, इल्म क्या है, खाना, बर्तन क्या है, अदब। बेहतरीन खुशबू आ रही है आपको, चलें पिज़्ज़ा पसंद है तो पिज़्ज़े को ले लीजिए, कोई ऐसी इश्तहा बढ़ाने वाली खुशबू, लेकिन जब कोई आपके सामने लाए तो डस्ट पैन में पेश कर दे, खाएंगे? कचरा उठाने वाले ट्रे में कोई आपको खाना पेश करे तो खुशबू वाला खाना भी अच्छा लगेगा। इल्म कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, पहले देखिए कि उसकी प्रेजेंटेशन क्या है। दिल का बर्तन गंदा होगा ना तो इल्म में असर नहीं होगा। आज ये वजह है कि बहुत सारों के इल्म में तासीर ख़त्म होती जा रही है। लफाजी बड़ी है, लच्छेदार बयान है, कानों से टकराती हैं बातें, अमल में नहीं ढलती। तो तासीर मांगे कि अल्लाह बात में असर डाल दे। और इसी तरह से एक और कॉल के बाद आगे चलती हूँ। अल कर्राफी कहते हैं, खूब अच्छी तरह जान लो कि बहुत ज़्यादा अमल की बनिस्बत थोड़ा अदब बेहतर है। किताब अल फुरूक जिल्द 3 पेज 96। तो अभी तो नहीं किसी को शक। आप बताइए कि आपको मैं जो ये बातें आज बता रही हूँ इसकी ज़रूरत है? टाइम तो नहीं आपका वेस्ट कर रही? रियली? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चलते हैं, आपको थोड़ी सी बात मैंने इसकी तमहीद की दी है। अब नेक्स्ट थिंग आपके पास मुआमला बिन नफ्स है। आप अपने नफ्स के साथ कैसा मामला करें? यानी आज असल बात, अगर आप इसको एक जुमले में लिख लीजिए, जैसे आप कहते हैं ना हुकूकुल इबाद, हाँ, ये आपके नफ्स के हकूक हैं। आप लिखिए इसका दूसरा नाम मामलात बिन नफ्स क्या है, इंसान के खुद अपने ऊपर हकूक, बींग अ ह्यूमन, मेरे मेरे क्या हैं। देखिए शायद इसकी वजाहत ना भी कर पाई हूँ, मुझे फील हो रहा है, चंद जुमलों में बोल दूँ कि इसकी अहमियत क्यों है। देखिए पहले अपना हक दीजिए। जहाज़ में बैठते हैं, एक अनाउंसमेंट होती है कि अगर आप के सफ़र के दौरान ऑक्सीजन कम हो गई तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ऑक्सीजन मास्क गिरेगा, तो क्या करें? उसको पकड़ कर मुँह से लगा लें। और साथ ही फिर आगे क्या कहते हैं, इफ़ यू आर ट्रेवलिंग विद किड्स, कोई भी आपके साथ है, हेल्प योर सेल्फ बिफोर हेल्पिंग अदर। ज़ाहिर है कि अगर माँ का अपना ही सांस उखड़ा है तो बच्चे को कैसे देगी। बस ये बात है, पहले अपने हकूक दीजिए। और अल्लाह के नबी सल्लम की एक बड़ी प्यारी रिवायत है, इन्ना इलई का हक्कुन, तेरा अपना भी हक है, नफ्स का हक है, तेरे जूर तेरे मेहमान का भी हक है। यानी हम सबको अपने हकूक भी दे रहे हैं, तो सबसे पहला अपना हक, बल्कि मैं इसका एक तीसरा नाम भी बोल देती हूँ, खुद को आग से बचाने के लिए क्या करें। चाहते हैं बच्चे, हम ये चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे बाएख्लाक हों, उनका अच्छा मुस्तकबिल हो, और इसको अपनी सक्सेस स्टोरी भी बना लें। आज जितनी बातें पढ़ेंगे ना, अगर ये सारी मेरे अमल में आ गई तो मैं दुनिया का सक्सेसफुल इंसान बन सकती हूँ, फिर आपके बच्चे भी आपकी मानेंगे। कुछ लोगों को देखे तो आपको ज़िंदगी के हर फील्ड में सक्सेसफुल दिखते हैं, कामयाब दिखते हैं, और कुछ की घर वाले भी नहीं सुनते हैं। है ऐसे मामले, बोलने लगे चुप डांट के बिठा देंगे, और ज़रा कोई बात करें तो सुनने को कोई नहीं तैयार। वजह यह है कि हमारे अपने अंदर वजन नहीं है। जैसे वो मैंने एक हकायत पढ़ी थी एक बुलबुल था या जो भी परिंदा था वट एवर, उसकी चोंच में एक पत्थर था, एक दरख्त पे आके बैठ गया। तो नीचे पानी था, उसने वो पत्थर चोंच से फेंका और पानी में गिराया। एकदम आवाज़ आई टिक, और उसके बाद पानी में ये गर्दाब दायरे बने। इमेजिनेशन में आ रहा है? बहुत यानी शोर भी उठा और हलचल भी मची। दरख्त भी ये देख रहा था, वो कैसे देख रहा था ये हकायत है। दरख्त को बड़ा ही उसके ऊपर आया, अच्छा इतनी खामोशी को इसने तोड़ा, सुकूत था और इसने शोर कर दिया और लहरें आ गईं, लो मैं भी करता हूँ। उसने अपना एक पत्ता सूखा हुआ वो भी गिराया वहीं जहाँ पे थोड़ी देर पहले बुलबुल ने पत्थर गिराया था। ना शोर उठा और ना लहरें उठी। तो बुलबुल ये देख रहा था, तो उसने कहा दुनिया में हलचल मचाने से पहले अपने अंदर वजन पैदा करना पड़ता। पत्थर में वजन था ना, पत्ते में वजन नहीं था। तो आपको अपनी शख्सियत को पत्थर की तरह मजबूत करना पड़ेगा अगर आपको इस दुनिया में जीना है। लोग आपको धक्के देके निकल जाएंगे आगे। वो कहते हैं कि पानी हमेशा उधर ही गिरता है जहां ढाल होती है। हमेशा जो बंदा नीचे कब, जो आप में से पर्सनैलिटी वाइज वीक है ना, सब उसको लताड़ेंगे, सब उसका हक खाएंगे, देखिएगा, उसको बातें भी सुनाएंगे और आगे से वो हंसेगा भी एक हद तक। देखिए हम्बल होना और बात है, ह्यूमिलिएट होना और बात है। बी हम्बल बट डोंट ह्यूमिलिएट योर सेल्फ, अपना मजाक ना कराएं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें जो आपको मुझे इंशाल्लाह फ़ायदा देंगी। सबसे पहली चीज़ है अपने हर काम की नीयत दुरुस्त कर लें, यानी नीयत की दुरुस्तगी कह लीजिए कि ये नीयत के आदाब है। दिल के इरादे सच्चे, अपने दिल को पाक कर लें। कोई काम करते वक्त नीयत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा को हासिल करना और उसके हुक्मों पे अमल करना रखिए। जितनी ज़्यादा आपकी नीयत अच्छी होगी ना, उतना आपका काम अच्छा होगा। बुखारी की वो हदीस नंबर 1 सबको याद होनी चाहिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात। उसके आखिर में क्या आता है कि जिसकी हिजरत दुनिया के लिए होगी उसको दुनिया मिलेगी, औरत से शादी के लिए होगी औरत से शादी हो जाएगी, और जिसकी जिधर हिजरत होगी। सहाबा में एक सहाबी थे, उनका नाम ही लोगों ने अल मुहाजिरु इब्ने कैस डाल दिया था। एक औरत से शादी करने के लिए हिजरत कर की थी उन्होंने। बहरहाल अच्छी नीयत से जो भी काम करेंगे ना उस पे अजर मिलेगा। हदीस याद है सही बुखारी की, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह तुम्हारी शक्लें और तुम्हारी सूरतें नहीं देखता। किस किस ने यह हदीस सुनी है? सही मुस्लिम 6542। उसने नीयत क्या है कि बेशक अल्लाह तुम्हारी शक्लों और सूरतों को नहीं देखता, माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे आमाल को देखता है। क्या पता चला कि जो माल दिया अल्लाह ने दिया, शक्ल दी तो अल्लाह ने दी। तुम अपने दिल की इसलाह कर लो और इसी तरह से तुम अपने ये आमाल को बेहतर से बेहतर बना लो। फिर इसी तरह से आप देखिए कि कोई भी काम करें ना तो अपनी नीयत अच्छी रखें। बुरा इरादा रख कर आप किसी से अच्छा भी काम करेंगे ना तो आप अपने नफ्स का हक नहीं देंगे। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन हम अभी हसनतें, जिसने नेकी का इरादा किया लेकिन वलम या अमलहा, लेकिन अमल नहीं कर सका, कुतिबत लहू हसना, उसके लिए भी एक नेकी लिखी जाती है। कभी अपनी नीयत को बुरा ना करें किसी मामले में भी। आप देखिए कि निकाह की शर्त क्या है, मेहर मुकर्रर करना, राइट? लेकिन अगर मेहर मुकर्रर करें लेकिन दिल में इरादा नहीं है कि निकाह अदा करूंगा, किसने देना है जी? तो वो जानी है। और कर्ज लिया और नीयत है कि कोई नहीं देना, वो चोर है, ये मुस्तद अहमद की रिवायत है। खराब नीयत और बुरा इरादा इंसान के नेक अमल को भी जाया करता है। सुबह उठकर किचन में जाने से लेकर रात बिस्तर पे सोने तक जो दीन दुनिया के बच्चों के शोहर के काम करती हैं आप, उसमें अपनी नीयत को दुरुस्त रखें। ये आपका सबसे पहला हक है। नीयत इज नेविगेटर। गलत एड्रेस डाल देंगे ना, गलत सास की खिदमत कर रहे हैं, नेविगेटर में शोहर की रजा है, नीयत खराब है, वाह वाह हो जाए। तो काबुल काम कर रही हैं, घर में दो बहुएं हैं, एक खूब भड़बड़ के काम कर रही है, नीयत है कि दूसरी बहू को पीछे डालना है, नीयत की खराबी है। रियली ये तभी तो हमें भी धक्के लगते हैं। हम कहते हैं हाँ इनके पीछे जिंदगी गुजार दी, खुश नहीं हुई सास। एक सिस्टर थी, कहने लगी मेरे ससुराल मेरे से कभी खुश ही नहीं हुए, मैंने क्या क्या ना किया इनको खुश करने के लिए। मैंने कहा सिस्टर माजरत के साथ आपका अमल ही दुरुस्त नहीं था। आपने इनकी खुशी के लिए किया ना, इसलिए नहीं खुश हुए। आप अल्लाह की रज़ा समझ कर एक अच्छे एहसान के जज्बे से करती तो ये आपसे खुश होते। और आज भी याद रखिए, जिस बंदे के पीछे इसलिए फिरेंगे ना कि वो आपसे खुश हो जाए, वो खुश नहीं होगा। आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसको खुश कर दें, अल्लाह उसको आपसे खुश कर देगा। फिर इसी तरह से याद रखिए, नीयत में एक और चीज़ बड़ी अहम, नाफरमानी का काम अच्छी नीयत से भी करें तो नेकी नहीं बनेगा। आप फंडिंग करते हैं जलजला जदगान के लिए कॉन्सर्ट करके, वो फंडिंग हमारे आपके हाथ में दे दी जाएगी क़यामत के दिन। किसी का दिल खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, या हराम माल से सदका कर रहे हैं, काम तो अच्छे हैं, नीयत बुरी है। तो नीयत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर याद रखिए, अच्छी नीयत से वही काम कबूल होता है जिसका अल्लाह ने और उसके रसूल ने हुक्म दिया हो। तो यहाँ बैठ कर ज़रा सा पूछिए अपने आप से, ये कोर्स क्यों कर रही हूँ? लेके करंट इस वक्त तो यही काम हो रहा है ना, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं भी तो खुद से पूछूँ, ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ आपको? मेरे लिए तो हर दिन की ये बुलसरात है। याद रखिए, नीयत शुरू में बहुत अच्छी होती है, ये भी लिख रहे हैं इसी के अंदर। नीयत शुरू में हमेशा अच्छी होती है, बाद में बिगड़ती है। जैसे आप घर से निकले, सबको पता है कि नॉर्थ साइड पे जाऊंगी तो उधर पहुंचूंगी, साउथ जाऊंगी। आप यहां से पहला टर्न कभी गलत नहीं लेते घर का या कहीं जाने का, अगले गलत होते हैं। अमूमन भूलते हैं तो बीच में कहीं भूल जाते हैं ना। इब्तदा में कोई भी काम करे, नीयत अच्छी ही होती है मोस्टली, लेकिन बाद में ख़राबी होती है। तो अपनी नीयतों की फिक्र कर, इसकी चेकलिस्ट इंशाल्लाह आपको कल देते हैं। इस पूरे आपकी पिछली चेकलिस्ट सासा बन रही है इबादत की, इस दफ़ा की तो इतनी मुश्किल होगी कि पसीने आ जाएंगे आपको। नीयत ट्रैकर, अपनी नीयत को देखें। कोई भी अहम काम दिन में जब भी शुरू करे ना, तो आपने उस चेकलिस्ट में टिक करना है कि मेरी नीयत क्या है इसको करने की। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा मामला। अगला हक आपका अपने नफ्स पर, क्या आपका ताल्लुक बिल्ला इंतहाई खूबसूरत हो। और यहाँ ये जो बातें बता रही है ना, ये आदाब प्लस फ़राइज़ है ना, हकूक व फ़राइज़। तो आप इसको कह सकते हैं अल्लाह ताला का अदब, या अल्लाह ताला के क्या हकूक है आपके साथ, जिसको आप अपने ताल्लुक बिल्लाह के साथ देख सकते हैं। और इसके अंदर आपने इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा गौर व फिक्र करना है। क्या मतलब है इससे, अल्लाह ताला का अदब कैसे करें, इससे क्या मतलब है? एक डेफिनेशन लिखिएगा, अल्लाह ताला के अदब से मुराद क्या है? इसके एहसानात को दिल से तस्लीम करना। फिर सेकंड, ज़ुबान से इसकी हमदो सना बयान करना जो इसकी शान के मुताबिक हो। और तीसरी बात, अपने आज़ा को अल्लाह की इताअत में लगाए रखना। बात समझ गए? इसका दूसरा नाम क्या था जो मैंने अभी बोला? जी बोलिए। देखिए, ये ईमान की तारीफ थी, आप थोड़ा घबरा गए। इकरारुम बिल लिसान, तस्दीकुम बिल कल्बी, व अमलुम बिल जवारह। जो ईमान की तारीफ है ना, वो अल्लाह का अदब है। चलिए, आपको ज़्यादा बात कब समझ आएगी? ये जो आगे आपको लिखाया गया ना, अल्लाह के साथ बेअदबी लिख रहे, इसका नाम आदाब में पॉइंट अब क्या देने लगी हूँ बहुत सारे, कि अल्लाह की बेअदबी कोई कर सकता? कैसे होती है? मेरा सवाल वाज़े, अदब तो समझ आ गया ना, दिल से मानिए, ज़ुबान से इकरार, अमल से कोशिश। आप बेअदबी नोट कीजिए कि एक बंदा अल्लाह की बेअदबी कैसे करता है। नंबर एक, अल्लाह के एहसानात का इनकार और नाशुक्री करके। दलील सूरत नौ 13 और 14, मालकुम ला तुरजूना, मालकुम ला तरजूना लिल्लाही वक़ारा, वक़द ख़लक़कुम अतवारा। तुम्हें क्या हो गया है, तुम अल्लाह के लिए किसी वक़ार यानी इज़्ज़त की तवक्को नहीं रखते, हालांकि उसने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया। तो पहली बेअदबी क्या है? ना शुक्री करना। दूसरी, अल्लाह ताला से भागने की कोशिश करना, दूर ही रहते हैं, रूठे रूठे ही रहते हो, अल्लाह बुलाता रहता है, हम उसकी तरफ आते ही नहीं, और उसके अपने मामलात को उसके सुपुर्द ना करना। कह देते हैं अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह हवाले, रब रखा, लेकिन करते कोई नहीं है। फिर फिक्रें अपनी दान की लगी हुई हैं, खाएंगे क्या, मियाँ की जॉब का क्या बनेगा, बच्चों की फीस कहाँ से आएगी। कह दीजिए अल्लाह के हवाले, फिर देखिए अल्लाह से भागना नहीं। चलें पूछें, फ़फ़िर्रू इलल्लाहु या फ़फ़िर्रू मिन अल्लाह, ये लिख लीजिए बेअदबी के, फ़फ़िर्रू मिन अल्लाह, अल्लाह से दूर भागते हैं। बस लोग घंटों बैठे रहेंगे, दावत में, शादियों में, ब्याहों में, जरा कोई के उठे नमाज ना पढ़ ले, ओ नहीं 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 बच्चों को लेते हैं, घर जाके पढ़ूंगी, ऐसे लगता है करंट लगता है। आपने किसी महफिल को बर्खास्त करा दें ना, या आप नमाज की बात शुरू कर दें या दर्स की, क्लास की शुरू कर दें। कल आप में से किसी की एक दोस्त मुझे मिली, मैं आपकी उम्मीदों पे पानी फेरने लगी हूँ, तो फिर उन्होंने जिक्र किया, हाँ हाँ वो मेरी एक दोस्त आपकी क्लास में आती है। मैंने कहा अच्छा, अल्हम्द ओ माशाल्लाह आप उनकी दोस्त हैं, वेरी गुड। तो मैंने कहा वो कोर्स कर रही, कहती नहीं नहीं उनका ख़त्म हो गया है। मैंने कहा उनका कोर्स कभी ख़त्म नहीं होगा, कहती रियली शी वॉज शॉक्ड कि अभी उनका कोर्स ख़त्म नहीं। मैंने कहा, कहती अच्छा कब ख़त्म होगा? मैंने कहा उनके साथ ही ख़त्म होगा। अब आप अपनी दोस्तों को सदमे दें, अब मुझे ये भी पता लग गया कि आप क्या उम्मीदें लगा के दे के आए हैं उनको, मैं आई अभी वापस। ये मत कहा करें, मत कहें कि ये ख़त्म हो, वल्लाह की ये कभी ना ख़त्म हो, ये दुआ किया करें। तो बहरहाल मैंने आपके एक दोस्त को नाराज़ कर दिया कल, अब वो खुद ही आपसे रब्ता करेंगी, तो आप कभी ना कहा करें कि ये ख़त्म हो गया। तो बहरहाल आगे चलिए, अल्लाह से नहीं भागना, कहाँ जाओगे भाग के? सोचो है कोई इतनी प्यारी हस्ती जिसकी तरफ भागो? अल्लाह को छोड़ कर जाना भी तो किधर जाना है, बच्चा तो आप ही की तरफ भाग भाग के आता है, तो आप अल्लाह से भागेंगी इसी बच्चे का नाम लेके कि काम नहीं करने देता? ज़रा सोचिए, घर वाले भी तो भाग भाग के आपकी तरफ ही आते हैं, तो आप इनकी वजह से अल्लाह से भागेंगी कि आप मुझे इनको खुश करना है? अल्लाह की तरफ ही भागें, सारे उसकी तरफ भागेंगे। देखिए जिधर माँ जाती है बच्चे उधर ही जाते हैं, औरत के हाथ में सब कुछ है। एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी, लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, हालांकि हकीकत है कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता, हर घर औरत का घर होता है। आप क्यों कहती हैं अम्मी का घर, अब्बू का क्यों नहीं कहती, बताइए मुझे? अक्सर आप बेगमात के नाम पे होता है, फलां के घर जा रहे हैं, उनके मियाँ का नाम कोई नहीं लेता, तो औरत का ही सब कुछ होता है। बहरहाल आगे चलिए, तीसरी चीज़ अल्लाह की बेअदबी की क्या है कि अल्लाह से नाउम्मीद हो जाना। सूरत यूसुफ 87 और हिजर 56। और चौथी बेअदबी अल्लाह से बदगुमान हो जाना। बदगुमान होने वाला शख्स नाफरमानी और बगावत करता है, याद रखिए सूरत फुसिलत 23। फिर नेक्स्ट, ये गुमान कि अल्लाह की इताअत और इबादत अल्लाह कबूल, यानी मैं तो अल्लाह की इताअत कर रही हूँ और अल्लाह कोई नहीं कबूल करेगा, ये उसकी बेअदबी है। सूरत नूर 52। यानी आप कहते हैं अल्लाह ने कोई नहीं कबूल करनी, मेरी दुआएं तो सुनता ही नहीं है अल्लाह ताला, कभी सोच सुना आपने ये बात? ऐसी बातें तो याद रखिए कि ये बात दुरुस्त नहीं है, अल्लाह के साथ इस तरह का मामला नहीं करना। सवाल पैदा होता है करें क्या फिर, अल्लाह के अदब की ज़रूरत कैसे है और इसके तकाजे क्या हैं? तो चंद जुमलों में इसको दोहरा लीजिए, करूं क्या फिर मैं? नंबर एक, छोटी से छोटी नेमत को बढ़ा कर पेश करें। अल्लाह जी आपने मुझे इतनी प्यारी चीज़ दी, अल्लाह जी मुझे आपने इतना प्यारा घर दिया, मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतने अच्छे भाई बहन दिए। अपनी एक एक नेमत की ना राग अलापा करें, जैसे राग अलापना होता है ना, री री करके बच्चे भी बोलते रहते हैं, आपकी जुबान पर हर वक्त ये लफ्ज़ हो, अल्लाह जी आपने जो दिया खूब दिया, खूब दिया, खूब दिया, सबसे ज्यादा दिया, सबसे अच्छा, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, मेरे भाई बहन सबसे अच्छे, मेरे माँ बाप सबसे अच्छे, मेरा शौहर सबसे अच्छा और मेरी सास भी सबसे अच्छी। दिल पे हाथ रख लिया करें, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कुछ भी नहीं होगा। और याद रखे, सास को अच्छा कहना आसान है, मेरी बहू भी बड़ी अच्छी, इसमें तो वाकई साथ एस्प्रिन की गोली रख ले। अल्लाह अकबर कबीर, वो रिश्ते जो हमें गुनाह से बचाते हैं। देखिए हमारी बहू हमारे बेटे को जिना से बचाती है, और हमारी बहू हमारी आने वाली नस्ल की अमीन है, हमें वही ना अच्छी लगे। और हमारी सास हमारे शौहर की बीवी माँ है, हमारे शौहर की माँ है, वो माँ ना होती तो शौहर कहाँ से आता? ये जो आप मिसिज फ़लां बन के चाबी गाड़ी की उछालती फिरती हैं, ये कहाँ से आती है? ये चेक बुक पे आपका नाम बेगम के नाम पे लिखा हुआ है, ये किसका बेटा है? सास से कोई और वजह ना भी हो ना, सिर्फ एक ही बहुत है कि वो आपके शौहर की माँ है। तो इन रिश्तों को इंजॉय किया करें, यही था आपके नसीब में, जैसी आप थी वैसी आपको मिल गई, सीधी सी बात है। आप कौन सी बहुत अच्छी हैं जो आपको अच्छे रिश्ते मिलते हैं, इस तरह अपने आपको डांटा करें। खैर आगे चलिए, नेक्स्ट थिंग क्या है कि अल्लाह ताला को की नाफरमानी करने से पहले सोचिए, क्या मुझे ये सजदा, डज इट सूट्स मी टू डिसोबे अल्लाह सुबहान ताला? हर वक्त इस चीज के ख्याल में और गुमान में रहिए कि मैं अपने रब को नाराज करके जाऊंगी तो किधर जाऊंगी। और फिर एक बात ये भी नोट कर लें कि हर वक्त यकीन रखिए कि अल्लाह को मेरे सारे हालात का इल्म है। जब ये रोब आ जाएगा ना दिल में, तो अल्लाह की हैबत और उसकी अजमत दिल में आएगी, और फिर इसी तरह से आप बढ़ते बढ़ते उसके करीब पहुंचते जाएंगे। शर्मिंदगी होगी आपको अपने ऊपर, फिर इसी तरह अपनी हर कामयाबी और इनाम को अल्लाह की तरफ मंसूब कर दें। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, मेरी तो ताकत नहीं थी, ये तो अल्लाह ने दी। वमा तौफीक इल्ला बिल्ला, मत अपने कंधे थपथपाएं, मेड बाय मी, ये मैं हूँ जिसने बनाया, ये मैंने किया, नहीं, कह दें अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर हुआ। फिर इसी तरह से आप देखिए हजरत, एक और बहुत प्यारा अल्लाह के साथ अदब का तकाजा है, बुरी चीज़ों को अपनी तरफ और अच्छी को अल्लाह की तरफ लेकर चले। इस पे तो मैंने एक अलग लेक्चर दिया हुआ है। हज़रत इब्राहिम के आदाब बड़े प्यारे थे अल्लाह के साथ। सूरत शोरा आयत 78 और 80 तक तर्जमा नोट कर लेंगे, जाके खुद ही समझ आएगा। कहते हैं फाइजा वाइजा मरीज तू, जब मैं बीमार होता हूँ, फहुव यशफीन, तो वो ठीक कर देता है, इसी से समझ है। हम कहते जब तू बीमार करता है तो फिर मैं दवाई खाती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ, टोन मैंने बदली है, समझ गए होंगे, ये बदतमीजी होती। देखिए एक ही बात है, कोई बात करता है, बात सच होती है, चुभती नहीं, और दूसरा ऐसे लगता है जैसे पत्थर मार दिया उसने आपको, चुप कर जाए आप, गलत है ये, किसी चीज़ को आप ये क्यों कहते हैं गलत है, आप ये कहते हैं ठीक नहीं है। जब आप लफ्ज़ गलत बोलेंगे ना तो अगले के ऊपर रिएक्शन आएगा, ठीक बोलेंगे ना इट्स ओके, पर नहीं है आगे, किल विद काइंडनेस जिसको आप कहते हैं। फिर इसी तरह से अल्लाह के अदब का तकाजा कि उस पर तवक्कुल करें, मेरे सारे मामले वो ठीक कर देगा इंशाल्लाह। इब्राहिम 12 और तिर्मिजी 2344। फिर अल्लाह की पकड़ का खौफ रखिए, ये भी अल्लाह के अदब का तकाजा है। इन्ना बदशा रब्बिक लशदीद, अल्लाह कुरान में कहता है, सूरत रात 11 में भी अल्लाह की पकड़ का जिक्र है। फिर इस तरह अपनी इबादत को हकीर समझिए कि जो कर रही हैं वो इस काबिल नहीं है, इबादत जो करती हूँ ना ये ठीक नहीं है, इससे फिर आजजी आएगी। सूरह बकरा 127, काबतुल्ला की तामीर है बाप बेटे ने की, और रब्बना तकब्बल मिन्ना, छोटा समझा तभी तो ये कहा ना। फिर इसी तरह एक और बेअदबी है कि नेक अमल करें और अजर और सवाब की उम्मीद ना रखें, सूरह नहल 97। फिर इसी तरह नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह के सिवा किसी और को समझना, ये बेअदबी है अल्लाह की, यानी वही बात है कि वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी। फिर इसी तरह गुनाहों पे शर्मिंदगी ना होना, ये बेअदबी है, मुस्नद अहमद 376 जिल्द 1। फिर अपने गुनाहों पे तौबा कीजिए, ये अल्लाह के अदब का तकाजा है, अल्लाह माफ़ कर देता है गुनाह को, सूरत निसा 11 और शूरा 25, मुस्लिम 6889। और सबसे बढ़ के अल्लाह के अदब का तकाजा वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, सबसे बढ़ कर उससे मोहब्बत करें, सूरत बकरा 165। जितनी अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे बाकी रास्ते आसान होंगे। तो क्या पता चला, नियत की दुरुस्तगी के बाद दूसरी चीज़ जो आपने मैंने अपनी फिक्स करनी है वो क्या है, अल्लाह के साथ मामला। वक्त लगता है, ताल्लुकात बिगड़े हो ना, कदम कदम आगे बढ़िए, ठीक हो जाएंगे। किसी को भी तसव्वुर में लीजिए कि जिसके साथ आपके ताल्लुकात बिगड़े हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपने कोशिश की तो ठीक हो गए। तीसरी चीज़ जो आपकी मेरी फिक्स करने के काबिल है, ताल्लुक बिल किताब या अल्लाह की किताब का अदब। अल्लाह की किताब कौन सी है, बहुत सारी हैं, आपके मेरे हाथ में कौन सी है, कुरान। क्या कुरान का भी कोई अदब है, क्या अपने कुरान को भी हम ठीक तरीके से देखेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे। तो पहली बात है कि अल्लाह की इस किताब का अदब लाजमी है, यही तो वो किताब है जिससे ज़िंदगी सब कुछ सही होती है, आखिरी किताब है, हिदायत वाली किताब है, अल्लाह के करीब करने वाली किताब है, इस पर अमल करने वाले कामयाब हो जाते हैं और बेअमल नाकाम हो जाते हैं। इसी किताब के ज़रिए तो कौमों को इज़्ज़त मिलती है और रसवाई मिलती है, सही मुस्लिम 897। और कुरान पढ़ने सीखने सिखाने वाले बेहतरीन लोग हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहू, बुखारी 50:27। और कुरान अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा, सही मुस्लिम 1874। और सबसे बड़ी बात है कि इस किताब वालों को अल्लाह ने अपने घर वाले का है, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, इब्ने माजा की रिवायत है 215। बाद में जाके नोट करिएगा कि कुछ लोग दुनिया में रहने वाले अल्लाह के घर वाले हैं। तो क्या पता चला कि इस किताब के अदब की बहुत ज़रूरत है। कैसे करें, नोट कर लीजिए। नंबर एक, बावजू होकर तिलावत करें, मुमकिन हो तो क़िबला रुख होकर बैठिए, अदब और वक़ार के साथ तिलावत करें, ठहर ठहर कर पढ़ें सूरत मुज़म्मिल आयत 4, खूबसूरत आवाज़ से बेहतरीन लहजे में पढ़िए अबू दाऊद 4169, 3 रातों से कम में मत पढ़िए तिरमिज़ी 2946, खुशू खुदू से तिलावत करें और रोने की कैफियत तारी करें इब्ने माजा, उस वक्त आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें जब दिखावे का ख़तरा हो या किसी के आराम में खलल हो, और ऊंची उस वक़्त पढ़ें जब किसी को सुनाने की ख्वाहिश हो तिर्मिज़ी 2919। फिर इसके मानी और मफहूम पर गौर कीजिए सूरत कमर 17। ये सबसे बड़ा अदब है कि इसके मानी को समझा जाए। फिर कुरान पाक की तिलावत गाफिलों की तरह नहीं करनी चाहिए, और कुरान मजीद की तिलावत करते हुए कोशिश करें कि अल्लाह वालों की सिफात पैदा हो जाए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्सेज के ज़रिए जो कुरान से किताब से ताल्लुक़ जुड़ा, क्या पहले ऐसा था? बिल्कुल फ़र्क था ना। ये कौलो इकरार लेने वाली किताब तो थी, पढ़ने पढ़ाने वाली थी, अमल की नहीं थी। जब किताब के साथ ताल्लुक़ बेहतर होगा ना, तो अगला ताल्लुक़ फिर ताल्लुक़ बिर रसूल, आपका आप पे हक है कि आपका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ दुरुस्त हो, और जितना ज़्यादा अल्लाह के नबी का अदब करेंगे उतना ज़्यादा आपको अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त और बुलंदियाँ भी अता करेगा। अल्लाह का आखिरी नबी है, अल्लाह ने आपको वो खूबियाँ दी जो किसी और को नहीं दी, खुल्के अजीम था सूरत कलम 4। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी की इत्तबा लाजिम है सूरत अलहज़ाब 21। फ़र्ज़ है आपकी मोहब्बत और इताअत हम पर, तकाजे क्या हैं अब ये नोट कीजिए, और आज इस पे जाकर उम्मत को तो परखिएगा। बल्कि ये जो मैंने उबर कुरान की ये आपको तकाजे बताए, इसमें मुझे तो कहीं भी ये नहीं मिला कि आज कुरान गिर जाए हाथ से तो आटा दो, इसके वज़न का बेदबी है, और इस जिस कमरे में पड़ा उधर पुश्त ना करो, और जिस अलमारी में ऊपर रखा है उसमें नीचे जूते ना रखो। ये हमारे खुद साख्ता मेयार है। इसी तरह नबी सल्लम के साथ आज उम्मत का ताल्लुक बहुत ही बिगड़ा हुआ है, तो नोट कीजिएगा नबी सल्लम के साथ अदब के तकाजे क्या हैं अपने नाते से सोचिए। नंबर एक, नबी सल्लम से दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत कीजिए सूरत तौबा 24, बुखारी 16 और बुखारी ही 6632। चंद सेकंड खामोश रहो, क्या मैं आप इस मयार पे पूरे उतरते हैं? दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यार, बल्कि एक लेक्चर मैंने चंद दिन पहले सोचा है कि खैरु मिन दुनिया व मा फीहा, कुरान की कुछ आयतें और हदीसों को जोड़कर जिस पे ये लफ्ज़ बोले अल्लाह के नबी ने कि ये चीज़ दुनिया और उसकी हर चीज़ से प्यारी है। अल्लाह अकबर। अगली बात, हर बात और हर मामले में रसूल की पैरवी कीजिए आले इमरान 31, आपके नक्शे कदम पर चलिए, फिर आपकी ताज़ीम की जाए सूरत फत 8 और 9 और बुखारी 2732। नेक्स्ट, आपका तذکرہ हो तो दुरूद शरीफ पढ़ा जाए सूरत अलहज़ाब 56, तिर्मिज़ी 3546। नेक्स्ट, जो दीन और दुनिया और आखरत की ख़बरें आपने दी हैं उसकी तस्दीक की जाए सूरत नजम 3 और 4। नेक्स्ट, जिन कामों को आपने पसंद नहीं किया आप भी उनको पसंद ना करें, और जिनको आपने पसंद किया आप भी उसको पसंद करें सूरत हशर 7। वमा अताकुम अर्रसूलु फ़हुज़ूहू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू और बुखारी 5435। फिर नेक्स्ट ये कि नबी सल्लम के पैगाम और तालीमात को दुनिया भर तक पहुंचा दें इब्ने माजा 232। किसके दिल में अब ये तड़प पैदा होनी शुरू हो गई है? ये है असल ज़िंदगी का मकसद, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसी लिए मुसलमान, मैं इसी लिए नमाजी। हम मुसलमान तो बने, नमाजी तो बने, लेकिन दीन की सरफराजी हमारा मतलूब ना रही। फिर नेक्स्ट क्या है कि नबी सल्लम के तरीक़ों को ज़िंदा रखने की कोशिश करें, कोई बिदत ना ज़िंदगी में आए बल्कि सुन्नतों को प्रमोट करें बुखारी 5063। फिर नेक्स्ट क्या कि आपकी मोहब्बत की बुनियाद पर नेक लोगों से मोहब्बत और फासिकों और नाफरमानों से बुग़्ज़ कीजिए और दुश्मनी रखिए। अलहुब्बु फिल्ला वल बुग़्ज़ु फिल्ला की तरह, अलहुब्बु फिर रसूल वल बुग़्ज़ु फिर रसूल, यानी जो नबी सल्लम से मोहब्बत करे आप भी उससे कीजिए और अपोज़िट भी। और अगली बात यह कि नबी सल्लम की इताअत करनी चाहिए। सूरह अहज़ाब 71, बुखारी 7280। और मस्जिद नबवी की ज़ियारत और रोज़े मुबारक के सामने दुरूद पढ़ते हुए आवाज़ें पस्त रखें, यह भी अदब है। फिर नबी सल्लम से आगे नहीं बढ़ना। सूरह हुजरात 1, ला तुकद्दिमु बैन यदिल्लाहि व रसूलिही। फिर नबी सल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करना। हुजरात 2। अब आज कैसे इस पे अमल करेंगे? अल्लाह के नबी तो मौजूद नहीं है कि आवाज़ उनकी और हम डाउन करें अपनी आवाज़ों को। शाबाश। और यानी जहाँ कुरान और हदीस की बात आ जाए तो दूसरों की बात को पीछे कर दीजिए, ये मुराद है। फिर इसी तरह एक और आपका अदब क्या है कि आपका नाम लेने की बजाय सिफाती नाम लेना चाहिए, यानी आपको मोहम्मद नहीं कहना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि रसूलुल्लाह, नबीउल्लाह वगैरह। सूरत नूर 63 में इसका रेफरेंस मौजूद है। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको मुझे सच्ची मोहब्बत दे। अच्छा, क्या अल्लाह के नाम के साथ बिल्कुल बराबर में या अल्लाह या रसूल लिखना चाहिए, या अल्लाह या मोहम्मद? कल भी हम एक मस्जिद में थे तो मैं देख रही थी उसको मुस्तकिल। देखिए, अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है, बराबर क्यों लिखते हैं? शुबा पड़ता है। लिहाजा अल्लाह के बराबर क्या अल्लाह से थोड़ा नीचे करके, और जिस तरह या अल्लाह कहते हैं उस तरह अल्लाह के नबी को कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते, ये बेअदबी होगी। तो इसको भी प्रमोट करें, अपने दिल में हर दिन किसी एक सुन्नत की मोहब्बत डालें। फिर उसके बाद देखिए आदाब बिन नफ्स, आपके अपने आदाब के, नफ्स की थोड़ी बात करते हैं। आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने सूरत नाजियात आयत 40-41 में क्या कहा, वम मन खाफ मकाम रब्बिही, वम मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़ाइनल जन्नत ही अलमावा। लेकिन जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और जिसने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से रोका तो यकीनन जन्नत इसका ठिकाना होगी। नफ्स को ख्वाहिशात से रोकना है, फिर नफ्स पाक होगा। फिर इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है 534, हर शख्स सुबह को उठता है अपने नफ्स को फरोख्त करने वाला या उसको आज़ाद करने वाला। अब आप खुद देखिए, खुश नसीब हैं वो लोग जो अपने आप को आज़ाद करते हैं, और बदनसीब हैं जो अपनी उम्रें ज़ाया कर देते हैं दूसरों के हाथों बिक बिक के। करना क्या है? सूरत शम्स आयत 9-10, कद अफलह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा। बेशक फलाह पा गया वो शख्स जिसने इसे पाक किया, यानी नफ्स का हक है कि इसको पाक कीजिए, और नामुराद हो गया जिसने इसको दबा लिया। कैसे नफ्स की पाकी होती है? आमाले सालेह के ज़रिए। और ख़राबी होती है गुनाहों से। सूरत मुतफ़िफ़ीन 12-14, तिर्मिज़ी की रिवायत है 3-3-3-4 के मोमिन एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर स्याह धब्बा पड़ जाता है। तो करना क्या फिर आपने? मैंने गुनाहों का अपने सॉरी करना क्या? नंबर एक, नफ्स को दबाना है, नेकियों की रग़बत रखनी है, गुनाहों से बचाना है। देखिए, आपने सफ़ेद कपड़े पहने हो, इसका क्या हक है? नंबर एक, इसको दाग धब्बे से बचाएं, पसीने से बचाएं, मैल कुचैल से बचाएं। बस इसको समझें, आपका नफ सफ़ेद चिट्टे कोर गोरे कागज़ की तरह होना चाहिए। दाग लग गया, ख़राब हो गया, फिक्र करें। अब यहाँ बहुत ही खूबसूरत चीज़, नफ्स की पाकीज़गी के तरीके। यानी गोल तो ये है ना कि नफ्स पाक रहे, लेकिन अब नफ्स पाक रह नहीं पा रहा, करें क्या? इसको साफ करें, पहले बताएंगे बात समझ आई है। नफ्स का हक है कि इसको साफ सुथरा रखें, जैसे कपड़ों को साफ रखते हैं, घर को साफ रखते हैं। कई दफ़ा हमारे घर तो बड़े चमक रहे होते हैं लेकिन हमारे नफ्स गंदे होते हैं। चमकते दमकते चेहरों के पीछे बड़े गंदे नफ्स होते हैं। तो यहाँ हम नफ्स की पाकीज़गी के चार मुख्तलिफ तरीके देखेंगे। नंबर एक, तौबा। आप बिल्कुल अपनी इमेजिनेशन से सोचें कि नफ्स गंदा हो गया, डर्टी हो गया, मैला हो गया, तो कपड़े गंदे हों तो क्या करते हैं? धोते हैं ना। इसी तरह से केयरफुल रहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तौबा। क्या मतलब? अपने गुनाहों पे नदामत, शर्मिंदगी, और आइंदा गुनाह नहीं करूँगी ये अज़्म करना। सूरह तहरीम आयत 8, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की तरफ तौबा तो नसूहा करो। और नसूहा का लफ्ज़ नसाहा, पैबंद लगाना, क्या बोलते हैं उसको, पैच लगाना। जब हम गुनाह करते हैं ना, तो हमारी रूह की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, तो उस उड़े हुए हिस्से को एक और कपड़े से, जिसका नाम तौबा है, सीलो, हेमिंग कर दो। तौबा करने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों तौबा करो, मैं दिन में 100 बार तौबा करता हूँ। सही मुस्लिम 6859 और 6889, 6989। फ़ायदे क्या होंगे, नोट कीजिए, क्यों करूँ तौबा? नंबर एक, गुनाह के गिल्ट से बंदा बाहर आ जाता है, फिर गुनाह माफ़ हो जाते हैं, आइंदा गुनाहों से बच जाता है, इंसान उस गुनाह से बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे किया ही नहीं, पाकीज़ा ज़िंदगी नसीब हो जाती है। और तौबा बड़ा बड़ा लिख लीजिए, ये बहुत ही खूबसूरत जेम बनेगा आपका। तौबा नफ्स का हक है, जो तौबा करते रहने से उसको नसीब होता है। जो लोग तौबा नहीं करते, कयामत के दिन उनका नफ्स उनका गिरेबान पकड़ेगा। हत्ता कि आपको होता है कि जब जान निकलती है ना, तो रूह बाहर जब निकलती है, तो बुरे इंसान को मलामत करती है, या अय्यतुहा नफ्सुल खबीसा कुंत फी जसदिन खबीसा। ए नापाक और गंदी रूह, तू बड़े गंदे जिस्म में थी, और जैसे तूने मुझे ज़ाया किया, अल्लाह तुझे भी बर्बाद करे। और इसका अपोजिट भी है, या ये तुहन नफ्सु तय्यबा, ए तय्यब रूह, कुंत फी जसदिन तय्यब। तो ये जो आपका मेरा अंदर नफ्स है ना, हमें अल्लाह ने ये जिस्म के अंदर उसको छुपा क्यों दिया, ताकि उसका हक रखे, दे, नहीं देते तो वो नाराज़ हो जाता है। फिर इसी तरह से अगली चीज़ है मोराकबा। कभी ये लफ्ज़ सुना है पहले? रकीबा, रकीब, रकबा, रकाबा, क्या है? गर्दन आज़ाद करना। अल्लाह ताला का एक नाम है अर रकीब। रकीब कहते हैं वो हस्ती जिसकी नज़र आपकी गर्दन पे हो। मुराद क्या है? गर्दन के ऊपर नज़र उसकी होती है जो आपको पकड़ सकता है। मुराकबे से क्या मुराद है? शौरी तौर पर अल्लाह की निगरानी को महसूस करें, पहली आयत सूरह निसा की। फिर दूसरी बात, मुराकबे से क्या मुराद है? ये यकीन रखिए कि अल्लाह आपके हर अमल से बाखबर है, और हाल और जाहिर, दिल के हाल और जाहिर सबको जानता है। सूरत बकरा 235 और यूनस 61। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने एक शख्स से कहा, है शख्स, अल्लाह के मुराकबे में रहो। इसने कहा, किस तरह? फरमाया, हमेशा ऐसे रहो जैसे तुम अल्लाह अज़्ज़ वजल को देख रहे हो। और वह हदीस एहसान भी याद कर लें जो बुखारी 50 में है, माल एहसान, कहा तुम इबादत ऐसे करो जैसे अल्लाह को देख रहे हैं। तो मुराकबा असल में तो एक बड़ी टर्म है ना, हमारे यहाँ इतनी मारूफ है, और तसव्वुफ में इसका कोई और ही रंग है। सिंपल बात है मुराकबे की, कि आप हर वक्त फील करें अल्लाह इज़ वॉचिंग में। बचपन में बच्चों को सिखा दें ये बात, अल्लाह इज़ वॉचिंग यू, तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ायदा क्या होगा? नंबर एक, अल्लाह की तरफ तवज्जो रहेगी, फिर अल्लाह की याद में इत्मीनान मिलेगा आपको, फिर कोई अच्छा काम करेंगे तो खुशी होगी क्योंकि फील हो रहा है कि अल्लाह देख रहा है। फिर अगली बात है कि अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देंगे, और फिर अपने नफ्स के हकूक भी पूरे करेंगे, और इंसान नफ्स का अदब करने के काबिल होता है। तो क्या करना है आपने? मैंने घर में, बाहर, अकेले में, लोगों में, खुशी में, गम में, शॉपिंग करते हुए या कुछ बेचते हुए, क्या सोचना है? अल्लाह इज़ वॉचिंग मी। तीसरा हक है हमारे नफ्स का मुहासिबा, हिसाब लेना। हज़रत उमर का एक बहुत ही मारूफ कॉल है, हासिबु कबला अन तुहासबु, अपना मुहासिबा कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। याद रखिए कि मुहासिबा नफ्स का हक है। दुनिया में इंसान का मकसद अल्लाह की इबादत के ज़रिए इसकी रज़ा हासिल करना है। जब एक इंसान मुहासबा करता है, तो गाफिल होने से बच जाता है। और याद रखिए कि जो हमारा असल सरमाया है ना, फ़राइज़ और उसके बाद नवाफिल है। जब हम मुहासबा करते हैं ना, तो हम अपने इस सरमाए यानी कैपिटल की हिफाजत करते हैं। देखिए ना, कमाई भी नेकियां ज़ाया हो गई, क्या फ़ायदा? माल को आग लग जाए तो दुख होगा ना। और इंसान अपने गुनाहों पर तौबा करता है। और ये कहाँ लिखा है कुरान में? सूरत हशर 18, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। करें कैसे, यानी मुहासबा करें कैसे, ज़रा सुनिएगा। इसको पढ़ते हुए तो वाकई रोना आ जाता है। आप और मैं अपनी ज़िंदगी को अगर इन लोगों से जोड़कर देखें तो शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। हज़रत उमर रात के वक्त अपने पाँव पर दुर्रा मारा करते और फरमाते, आज तूने क्या क्या काम किए हैं। पाँव पे कोड़ा मारते और अपने पाँव से पूछते, आज किधर किधर चल के गए हो। मुहासबे का एक तरीका है। अहनफ बिन कैस चराग के पास आते, तसव्वुर से देखिए, तसव्वुर की आंख से देखिए। चराग के पास आते, अपनी उंगली आग के ऊपर रखते, यानी फ्लेम जो होता है ना, शोला, उसके ऊपर हाथ उंगली रखते और अपने आप को कहते, ए अहनफ, फलां दिन तूने ये काम क्यों किया, किस चीज़ ने तुझे ये काम करने पे आमादा किया था। उसकी सज़ा खुद को देते, भला क्यों? हासिबु कबला अन तुहासबु, दुनिया में खुद को आग के करीब करके देख लो कि जहन्नुम की आग में जाकर क्या होगा। तो मुहासबा क्या है कि हर रोज अपने रोज के आमाल का मुहासबा करें। मेरे फ़राइज़ में कमी तो नहीं आ रही? आ रही है तो खुद को मलामत कीजिए, तलाफी शुरू करें। कभी कभी हम बहुत बड़े बड़े नेकियों के काम कर रहे होते हैं, फिर एकदम सुस्त हो जाते हैं। फरिश्ता भी सोचता होगा, आज इसका अकाउंट क्यों खाली है, आज छुट्टी का दिन है। देखिए, अब आपकी पिछले चंद सालों में बहुत सारी नेकियां ऊपर जा रही हैं रोज़, बिला मुबालगा। कुरान के एक एक लफ्ज़ को 10 से ज़रब दे लें और उसको 4-4 दफ़ा तो आप पढ़ते सुनते ही हैं ना। अल्लाह ना करे ये ख़त्म हो गया ना, तो फरिश्ते आपकी बैंकरप्सी फाइल कर देंगे कि अब इस अकाउंट में कुछ जमा क्यों नहीं हो रहा। हमेशा पूछें, कल तक तो ये नेकी मैं करती थी, अब क्यों नहीं कर रही। छुट्टी करते ना एक दिन, ये मैं आपको तरीके सिखा रही हूँ मुहासबे के, छुट्टी की कितनी नेकियां महरूम, नेकियों से महरूम है। एक है छुट्टी, एक छोटा सा, मैं आई कैंट कम टूडे, ख़त्म। और मुहासबा कीजिए, आज वहाँ ना जाकर मेरी कितनी नेकियां ज़ाया हो गई। आप कहते हैं मुझे रिकॉर्डिंग दे दीजिए, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होगी। हाँ, यू आर टेकर, तो यहाँ आप गिवर होते हैं, पता है आपको ये बात। जब आप किसी क्लास में होते हैं, मैं आपको एक फीलिंग देने के लिए समझाने लगी हूँ। आपने सबीलुल जन्ना कोर्स किया, इधर रिकॉर्डिंग आपको सुनाई जाती थी, आपको तो पता भी नहीं होगा किन स्टूडेंट्स के सामने बैठकर मैंने ये पढ़ाया, राइट? तो क्या ये सबीलुल जन्ना की रिकॉर्डिंग जहाँ भी चलती है, ये सिर्फ मेरा सदका जारी है? आपको पता है कि उस दिन सदका टेक्निकल पे कौन बैठता होगा? आपको तो नहीं पता ना, मुझे पता है। तो क्या उनका सदका जारिया नहीं होगा? किसने इसको बाद में एडिट किया होगा? 2-3 दफ़ा ये सेट तो एडिट हुआ, री एडिटिंग हुआ, तो क्या उसको सदका जारिया नहीं मिला होगा? किसने इसको अपलोड किया, किसने उधर से डाउनलोड किया, किसने कंप्यूटर में डाला? कितने लोग हैं जो सिर्फ एक वजह से नेकियों में शरीक हो गए। आप छुट्टी कीजिए, आपका सारा हिस्सा निकल गया। बात समझ रहे हैं? हमेशा अपना मुहासबा करें। हम में से हर एक रिच होना चाहता है, वेल्दी होना चाहता है, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है। चलें, दुनिया का माल हमारे हाथ में नहीं, नेकियां तो हमारे हाथ में, सिर्फ सो के गुजार दें, सिर्फ सुस्ती नहीं, रोज़ नहीं कर सकती, आज नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ, जिसको आखिरत अपनी नज़र आएगी वो कभी नेकी पे नो नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? कि मेरा आज ही तो दिन है कमाने के, फिर कौन होगा? अभी उम्र है, बाद में बूढ़े हो गए, फिर किसने कमाना है? कई लोग माल दोनों हाथ से समेटते हैं, क्यों? काम आज कर लें, बाद में मुश्किल होगा, सीज़न है, चलो ज़्यादा देर दुकान खोल लेते हैं। तो नेकियों में हरीस हों। चौथा, नफ्स का हक है मुजाहिदा। इंसान का अपना नफ्स इसे बुराई की तरफ आमादा करता है, इसलिए कि इसे आराम और आसाइश पसंद है, फजूल और बेमकसद कामों से दिलचस्पी है। इंसान जब अपने नफ्स को मुशक्क़त पर आमादा करता है, उसकी ख्वाहिशात पे पांव रखता है, और जब नेकी के कामों में ज़रा सा पीछे हो तो इंसान उसको दबाए, तो नफ्स पाक होता है। ये है मुजाहिदा, जुहद से मेहनत करना। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान पाक में मुजाहिदे की बात क्या करते हैं? सूरत अनकबूत 69, वल्लजी नजाहदू फीना लनहदीयन्नहुम सुबुलना। इतनी खूबसूरत आयत है ये कि शायद ही कोई और हो। जो लोग हमारी खातिर मुशक्क़त उठाएंगे हम इन्हें ज़रूर अपने रास्ते दिखाएंगे, और यकीनन अल्लाह नेक लोगों के साथ है। हमने भी क्या किया, याद रखिए, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करेगा वो पाएगा। घर बैठने वाला कुछ नहीं पाता, निरी सुस्ती, निरी महरूमी। एक वक्त है लोग भाग रहे होते हैं, हांप रहे होते हैं, उनके बगैर कोई नेकी नहीं होती। और एक ऐसा जरासीम अंदर दाखिल होता है, बैक्टीरिया, कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, बड़े मुतमईन बैठे हुए। लेकिन वो नुकसान में चले गए। हमारे असलाफ कैसे अपना मुजाहदा करते थे? सबसे बड़े असलाफ तो नबी सल्लम हैं, सलफ सालेहीन में रातों को इतना क़याम करते कि पाँव सूज जाते। और जब आपसे पूछा गया कि आप क्यों इतनी मेहनत करते हैं, तो फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। बुखारी की रिवायत है 4837। अबू दरदा का कॉल सुनिए, अगर तीन चीज़ें ना होती तो मैं एक दिन भी जिंदा रहना पसंद ना करता। कौन सी चीज़ें? नंबर एक, दोपहर के वक्त अल्लाह के लिए प्यासा होना, सोचे, गर्मियों के रोज़े, आधी रात के वक्त उसके लिए सजदा करना। और ऐसे लोगों की दोस्ती जो साफ सुथरा कलाम पसंद करते हैं, जैसे कि अच्छे फल पसंद किए जाते हैं। अच्छी बात करने वालों के साथ दोस्ती करें, वल्गर और गंदी बातें करने और सुनने वालों को दोस्त मत बनाएं। हज़रत उमर ने असर की नमाज एक दिन जमात के साथ ना पढ़ी, ना पढ़ सके। अपने नफ्स को एताब किया, एताब कहते हैं डांटना, और इसकी पादाश में सोचिए क्या किया होगा। एक नमाज छुटी, सिर्फ नमाज नहीं छुटी, जमात छुटी। कौन सी? असर की। असर को क्या कहा कुरान में? सलातुल वुस्ता। और जिसकी असर छुट जाए उसको हदीस में क्या कहा? कि घर माल सब तबाह हो गया। हजरत उमर ने एक दिन जमात के साथ असर की नमाज छूटने पर 2 लाख दिरहम की जमीन सदके में दे दी। ये है मुहासिबा। अल्लाह अकबर। तो मुजाहिदा नफ्स करना पड़ेगा, नफ्स पाक होगा, अच्छे लोगों के तरीकों पे चलेंगे, अल्लाह की रजा हासिल होगी। और इसका सबसे आसान और खूबसूरत तरीका है हसूल इल्म। इल्म हासिल कीजिए, इल्म रोशनी है, इल्म सबसे अफजल इबादत है। अगर वो अल्लाह ताला की मार्फत का इल्म हो और इसके मखलूक के हकूक की अदायगी का इल्म हो तो ये बेहतरीन इबादत है। सूरत जुमर 9 और मुजादिला 11। इल्म क्यों हासिल करें? इसलिए कि अल्लाह की खशियत का जरिया है। सूरत फातिर 28 याद है। आलिम की तारीफ क्या है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से सिर्फ उसके इल्म वाले बंदे ही डरते हैं। तो इल्म खशियत देता है, और इल्म अमल का इमाम है। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं उसे दीन का इल्म अता फरमाते हैं। बुखारी 71, मुस्लिम 2389। और शरीयत का इल्म अकीदे और इबादत की इस्लाह करता है। देखिए, आज हमने इंट्रोडक्शन में बात की ना, अकीदा ठीक होगा तो इबादतें ठीक होंगी, इबादतें ठीक होंगी तो मामलात ठीक होंगे, ऐसे ही है ना। तो इल्म ही नहीं लिया तो सारा कुछ गया। आमिला तो नासिबत बन जाती है इबादत अगर बग़ैर इल्म के की जाए। ये लोग जो इतनी बिदात करते हैं झूम झूम के, कोई वो बुरे इरादे से नहीं करते, बेइल्मी से कर रहे हैं। आज इल्म दीजिए फौरन छोड़ देंगे। और दीन का इल्म मौत तक हासिल करना वाजिब है। इब्ने माजा 224। तो हमेशा इल्म हासिल करें। क्या आदाब है इल्म हासिल करने के? 3 हिस्सों में लिख लें, चले 2 में लिखा देती हूँ। नंबर एक, हसूल इल्म से पहले क्या करें? व्हाट आर द एटिकेट्स एंड मैनर्स ऑफ नॉलेज? कब? पहले नंबर एक, पेट में रिज़्क़े हलाल हो। हराम लुकमों से इल्म की बरकत ख़त्म हो जाती है और दुआएं कबूल नहीं होती। सही मुस्लिम 2346। और इस क्राइटेरियन पे परखिए, कितने ही लोग हैं उनको बीसियों बार भी मौके मिलते हैं वो फिर भी इल्म नहीं लेते। सबसे बड़ी वजह पेट में हराम का होना है। रिज़्क़े हराम के साथ सच्चा इल्म मैच ही नहीं करता। बंदा एक रात, एक दिन नहीं, एक घंटा सुनेगा, उठ के चला जाएगा। हर चीज़ तो उसके खिलाफ पड़ रही है, ये तो मेरी बातें हो रही हैं। सूरत नूर खोल के आखिरी आयत, आखिरी रुकू पढ़िए। मुनाफिकी नबी सलम की महफिलों में जुचबुच हो जाते थे, कभी उठते कभी बैठते, लिवाजा कभी या तसल्लून, इधर भाग दो जरा अल्लाह के नबी का मुंह, इधर हुआ बाहर भाग गए। बर्दाश्त ही नहीं होती वो महफिल, चुभती है। जैसे जख्म हो तो टंक्चर लगाएं तो चुभता, जख्म नहीं होगा वो टंक्चर कुछ भी नहीं करेगा। याद रखिए, पेट में हराम के लुकमों के साथ दीन नहीं सीखा जा सकता। वजीफे किए जा सकते हैं, दरूद पढ़े जा सकते हैं, खत्मे कुरान हो सकते हैं, तो रिस्के हलाल कीजिए हासिल। दिल रोशन होगा, वक्त में बरकत होगी, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी रिस्क के हलाल से। फिर दूसरा अदब क्या है कि खाने पीने में मियाना रवि इख्तियार करें, बैलेंस डाइट के साथ इल्म हासिल करें। बहुत ज़्यादा खाएंगे तो सो जाएंगे, बिल्कुल नहीं खा कर आएंगे तो नींद आ जाएगी। इसके भी बहुत सारे हवाले मौजूद हैं। फजूल कलाम और ज़्यादा नींद से निजात हासिल करें, जो तालिब इल्म है उसको ये लाजिम है। और ये हिस्सा हम अलग से भी एक छोटा क्लिप बना के नए कोर्सेज में के शुरू में सुना सकते हैं। फिर इसी तरह शरीयत की मुखालफत से निजात हासिल करें। जब तक अपेरेंटली शरीयत के मुखालिफ रहेंगे ना, पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, पीने में, वट एवर, इल्म नहीं मिलेगा। इमाम शाफी का दीवान पेज 54। फिर इसी तरह दोस्त बनाने और इनके सब वक्त गुजारने को महदूद कीजिए, अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें। टू मच सोशलाइज बंदा भी संजीदगी के साथ इल्म नहीं हासिल करता। फिर इसी तरह अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म हासिल करने की नीयत कीजिए और इसे खालिस करें। फिर नेक्स्ट, इल्म के लिए दूसरे मशागिल तरक कर दें। मिनहाजुल कासिदीन मुख्तसर 174। फिर सबसे बड़ी बात जो आप सबको भी खूब अच्छी तरह करनी चाहिए, कान खोल कर सुन लें, अच्छे उस्ताद का इंतखाब करें। यह सही मुस्लिम का मुकदमा शरह नववी का जिल्द 1 126 पे आपको फिर इख्तियार देते हैं। वल्लाही मैं तो अपने दिल पे बिल्कुल हाथ रख के कहूँगी, आपने अब इतने दिनों से पढ़ा सुना, अभी भी फिर सोच लीजिए। कहीं शक है ना अगर आपको आपने इधर के उस्तादों पे, तो पूछ लीजिए, शक दूर कर ले। अकीदा ठीक है, सुन्नत के मुताबिक है, और जो कुछ भी आपका है, लेकिन इस सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं होता। मुझे हैरत होती है उन लोगों पे जो उन उस्तादों के पास बैठे होते हैं जिनका एक लफ्ज़ अरबी का ठीक नहीं। नहीं, लोग कहते हैं आप पढ़ाएं, रिकॉर्डिंग नहीं चलानी, नींद आती है। तो ये बंदा जिसकी अरबी भी ठीक नहीं है, जिसका मफहूम इतना गलत है, उसने भी एक दफ़ा कुरान पूरा नहीं पढ़ा, वो जाके बैठ गया पढ़ाने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सिर्फ इसलिए कि वो खुद जिंदा बंदा सामने है, रिकॉर्डिंग बोलती नहीं। भूलें, उस पढ़ाने का हक है, आप में से हर एक को हक है। और आज सुबह पढ़ते हुए आते हुए मैं इंजॉय कर रही थी वो वक्त, बता दूं आपको, अभी वक्त नहीं है बताने का इतना, लेकिन जो आप अगले कोर्स करेंगे, आप सब इस शहर में पढ़ाएंगे खुद, वल्ला ही पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने उस्ताद के सामने बैठ के पढ़ाएंगे। जो शागिर्द अपने उस्ताद के सामने बैठ के ना पढ़ाए, उसको कभी किसी और जगह पढ़ाने का हक नहीं है, क्योंकि उस्ताद ने तो माँ बच्चा वाला ताल्लुक समझ के गलतियाँ बतानी है, तो बहरहाल तो बतानी। और उस्तादों का नाम सुन के लोग कहते हैं घिघी बन गई, आप होते हैं तो हम नहीं बोलते, तो इसका तो आप बाहर पढ़ाने के काबिल नहीं है। ये अगला आपका पूरा कोर्स इस ट्रेनिंग का है, आप 2 साल बाद देखिए आप कहाँ पहुँचेंगे। लेकिन अपनी मर्जियाँ कर लीजिए, तो जहाँ मर्जी अभी भी पहुँच जाइए। हवा में उड़ते हैं वो लोग जो बग़ैर किसी की कंस्टडी के पढ़ाना शुरू करते हैं। आज उम्मत का एक बहुत बड़ा आलमी है, वो लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने अभी खुद भी नहीं पूरा पढ़ा। एक कोर्स करके आप पढ़ा सकते हैं, मुझे बताइए। आप सबीलुल जन्नत कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तकरीबन 2.5 ईयर लगे। आप में कितने लोग हैं जो बिल्कुल बगैर किसी और हेल्प के आप पढ़ा सकते हैं? लोग कहते हैं हम एक एक लफ्ज़ सुन के लिखते हैं, आपका ही सुनते हैं, आपका नहीं लिखे, जिसका मर्जी लिखें, कभी लफ्ज़ बोले नहीं जाते। देखिए खाना खाते हैं ना, जो खाया एकदम वॉमिट कर दें तो बू आएगी ना। ये होता है किसी के लफ्ज़ सुने और जाके बोल दिए, किताब नोट्स खोल के रखे, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जीतनी उन्होंने, और ये कहते, कई गलत लिख लेते हैं, गलत ही बोल देते हैं, ये खाया और उलट दिया। नहीं, जो इल्म दिया ना, इसको पहले अंदर डालिए। ये आज से ही पढ़ रहे हैं हम, पहले इस इल्म को अपने अंदर ढालें, शख्सियत के आप हजम करें पहले इस इल्म को। किताबों से कौन पढ़ता है, ये तो आप अपने अंदर से पढ़ते हैं। तो जिसको भी पढ़ाने का शौक है, ये सबसे प्यारा शौक है, आप सबको होना चाहिए। और आप में किसी को में अगर पढ़ाने का शौक नहीं, तो फिर वो सही तालिब इल्म नहीं। लेकिन उससे पहले इस इल्म को जज़्ब कीजिए। फिर नेक्स्ट, चलिए, ये तो थे इल्म हासिल करने से पहले के आदाब। आप क्या इल्म हासिल करने के दौरान, ड्यूरिंग द नॉलेज, यानी जब आप तालिबे इल्म बन गए हैं, अब एक्सेप्टेंस हो गई, नंबर एक उस्ताद की इज्जत कीजिए, उनसे अदब से पेश आए। ये कुछ हिस्से आगे भी आएंगे इंशाल्लाह, इसको मैं वहंत करूंगी। और मेरा तो दिल करता है कि कोई और ही आपको पढ़ा दे, कहीं आप ये ना सोचें कि मैं अपने हकूक आपको बता रही हूँ। लेकिन ये इंशाल्लाह हमारा तीसरे दिन के टॉपिक माशरती हकूक में आना है। वैसे टॉपिक मैं इस सारे को स्किप करती हूँ, मुझे याद दिला दीजिएगा, वहाँ बोल दूंगी। लेकिन इल्म हासिल करने के दौरान जो चीज़ आपने ज़रूर करनी है वो क्या है कि आपने इस इल्म की कदर करनी है। अभी सिर्फ इस पे भी रह जाएंगे ना तो फिर इंशाल्लाह बाकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जिसने सोर्स ऑफ नॉलेज ठीक कर लिया, अच्छे तरीके से कर लिया, बाकी काम अल्लाह ताला उसके खुद बहुत अच्छे करा देगा। इसके बाद आप देखिए, ये तो आपकी पर्सनालिटी का इनटेक था, ऐसे ही है ना, अल्लाह से ताल्लुक, रसूल से ताल्लुक, किताब से ताल्लुक, बाकी जो कुछ अभी तक मैंने आपको पढ़ाया ना, लिख लीजिए, ये है आपकी के नफ्स, आपके किरदार का हक आप पे, ठीक है। इसके बाद कुछ चीज़ें, मसलन अगर आप अपनी शीट को देखें, एक टॉपिक आ रहा है खाने के आदाब, ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा पीने के आदाब, नेक्स्ट सोने के आदाब, फिर जागने के आदाब, कज़ाए हाजत के आदाब, लिबास के आदाब, ये सब क्या है आपकी डे टू डे लाइफ। ये है उस चीज़ का गम्मास कि आप किस दर्जे के इंसान हैं। हमारा दीन इतना खूबसूरत है कि हमें हर मामले में गाइड करता है कि लोगों अपनी फिक्र करो। ब्रेक लीजिए इंशाल्लाह, मैं कुछ बातें मैं बोलूँगी, बाकी आपने खुद लिखनी है, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है, अभी तक जो पढ़ा है उसके बाद क्या आपको खुद क्या फील हुआ कि यहाँ बैठकर आपने क्या पाया? हर रो में से एक एक बंदा बता दें। शाहीन आपसे शुरू करते हैं। दूसरों को हम कंट्रोल करना चाहते हैं और अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं। जी आपने नाइमा क्या सीखा? नफ्स को अपना आप कहें, मैं, आप सब अपना नाम लिखें। आज का जो कुछ पढ़ा है ना, आप सब अपने नाम, मेरा खत मेरे नाम, मेरी रिक्वेस्ट मुझसे, मेरी दरख्वास्त मुझसे, अपने आप को कहे अल्लाह की बंदी मेरी बात मान लो, अल्लाह की बंदी मुझे। आपको तो कि हमारे असलाफ अब शीशे में खड़े होकर अपने आप से बातें करते थे, शर्म कर है नफ्स, तुफ है तुझ पे। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने मैंने अपने आप को या तो जन्नत में ले जाना है या जहन्नुम में। शुरू में हदीस सुना थी ना कि हर रोज़ सुबह उठ के हम सौदा करते हैं, या तो इस नफ्स को जहन्नुम के काबिल कर देंगे या जन्नत के। तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है तो अपने ऊपर करनी है। आप अपने पे करके तो देखिए, फिर जो अल्लाह आपके ऊपर दूसरों को लगाएगा वो आप अभी उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। इस रो में से कोई, आप में से कौन कुछ कहना चाहता है? आपकी बारी गुजर गई, असल में वन वन ले रही थी एक रो से। जिसमें सेल्फ ग्रूमिंग, और ये एक पूरा टॉपिक है नूरुल्लाह नूर का, चलना कैसे, बोलना कैसे, खाना कैसे, पीना कैसे। देखिए हम छोटे छोटे वो जिक्स पजल्स नहीं होते, हम वो हैं। हर टुकड़ा अपनी जगह फिट होगा, एक अच्छी शख्सियत बनेगी। जी इस लेन में से, जी मरियम, वो कहते हैं ना कि डूब के पा जा सुराख़े ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता अपना तो बन। मैं कहती हूँ कोई ना आपकी माने, आप अपनी माननी शुरू कर दें, आधा काम तो इधर ही हो जाएगा। जी इस लेन में से, जी यानी अच्छी चीज़ें अल्लाह के नाम, बुरी चीज़ें मेरे नाम। आपने क्या क्या छोड़ा? जी शायद आप कुछ बहुत थोड़ा सुना है आपने, लेकिन जो सुना उसमें से
लेकिन जो मुझे अपने लिए समझ आया ये कि इल्म को अंदर अपनी जात के अंदर हिस्सा बनाना पहले ज्यादा जरूरी है।
पहले एक हजम कीजिए, ये इल्म जो मिलता है ना इसको डाइजेस्ट करें, पूरी बॉडी के एक एक हिस्से में, ब्लड के एक एक कतरे में ये इल्म चला जाए, फिर आगे दूसरों को देंगे इंशाल्लाह। जी आप, जी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आज तो सेल्फी कल्चर है, ये भी एक लेक्चर बना दें सेल्फी कल्चर, बिलीव मी कर दें, इस पे हम नफ्स पे बातें करेंगे। और एक सेल्फी की तस्वीर बना दें। मैंने पहली दफ़ा, मैं आपको अपनी बेवकूफ़ी सुनाती हूँ, मुझे याद नहीं मैं किस जगह थी, किसी मुल्क में, कहाँ, आई डोंट नो, हम कहीं से गुजर रहे थे तो सोटियाँ बड़ी हुई थी, सोटी कह ले, यानी मैंने प्यार से सोटी कह, स्टेक्स थी, बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ थी। ये तो आपने देख लिया ना, फ़ोन होल्डर है, तो आप कोई सोटी दे मुझे, ऐसे ना छड़ियाँ थी लंबी लंबी, हाँ से स्टिक्स थी, काफ़ी सारी इकट्ठी पड़ी हुई थी ना, किसी शॉपिंग, कोई ऐसी किताबों की दुकान होगी ना, तो इस तरह की चीज़ थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, ऐसी ना लंबी स्टिक, आपने अब समझ गया ना, तो मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम वो चीज़ देखी थी, तो ऐसी स्टिक्स थी, एक बड़ा सा वो जैसे उनके होते हैं ना बाल्टियाँ सी, उसमें डली थी, तो उसमें ये चीज़ें बिक रही, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा ये क्या। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि इसके ऊपर स्टिक लगा के तो अपनी तस्वीर खींचते हैं, वो सेल्फी स्टिक, उसका नाम था सेल्फी स्टिक, प्यार से अब तो सबको ही पता है। तो बिलीव में ये सेल्फी कल्चर है, लेकिन अंदर नहीं ढूंढते, शक्लों पे कितनी बातें हैं, पागलों की तरह शादियों में बैठ के अपने ही पोज खींच रहे हैं। मैं किसी जगह गई और वहाँ एक सिस्टर थी हमारे साथ वाले टेबल पे, एक वो थी एक और की बैठी थी, तो मुझे लगा कि वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं, रियली बिलीव मी, मैं मजाक नहीं कर रही उनका, मेरे साथ बाजियाँ भी थी, हम लोग किस सभी इकट्ठे गए थे, तो मैंने कहा बाजी ये लड़की नॉर्मल है, तो बाजी कहती क्यों क्या, मैंने कहा ये पोज ऐसे टेढ़े मेढ़े और ना ऐसे उसके हाथ में कुछ था, मुझे बुरा नहीं दिख रहा था, तो फिर बाद में पता चला बिलीव मी ऐसे कुत्तों की तरह की शक्लें बना बना के अपनी तस्वीरें खींच रही थी, वो कोई होगा उधर या खींच रही थी, या बाद में पता चला कि उसके सामने उसका अपना फोन था और वो उसमें पोज बदल बदल के तो उससे खींच रही थी। देखिए ये क्या कल्चर है, अपने आप को सुधारना है तो अंदर से संवारना है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे, जाइए भाग के 15 मिनट की ब्रेक करके वापस आ जाइए, हाँ 10 मिनट ले लें, जाएं जी, अब आप शाहीन से नाराज़ ना हो।
ठीक है, दिल को छुआ जी।
निया इज लाइक योर नेविगेशन, उसको फिक्स करना है।
निया इज लाइक योर नेविगेशन, उसको डायरेक्शन में लेके चलना है जी। तस्किया नफ्स, बहुत ही मुश्किल काम, कैसे प्लान कर रही है करने को, मुझे भी सिखाइए। जी, मुझे लग रहा है इसके लिए पता है क्या चीज़ हेल्पफुल होगी, अगर प्रैक्टिकल टिप के लिहाज से, एक पेपर में अपना नाम लिखिए और आसपास अपने रिश्तेदार जिनसे हमको फिक्स करने की ज़रूरत है या लोग, उनके नाम लिखिए और फिर उसमें एक रास्ता ड्रॉ करिए। मैं सोची थी मैं ये अपने लिए एक्टिविटी करूँगी और उसको रास्ता ड्रॉ करें, उस रास्ते के हर्डल्स लिखिए कि क्या क्या हैं, देन वी कैन वर्क अराउंड दोज हर्डल्स, है ना। ठीक है जी। अलहमदिल्ला, ये जो इन्होंने अभी कहा ये बहुत अच्छी बात है कि इन इनमें इतना करेज था, आ गया अलहमदिल्ला कुरान के बाद कि इन्होंने फ़ोन करा। अब एक और बस शेयरिंग, उसके बाद फिर शुरू करेंगे जी। आपने बोल चुकी हैं, आप कोई और बोलेगा, किसी को बोलना है तो जी।
अपने नफ्स को मारना एक इबादत समझ लिया,
सुभान अल्लाह, अपने नफ्स को मारना भी एक इबादत है। आज ही हम लोगों ने सीखा कि अल्लाह का जो खौफ होता है ना, वो इस चीज़ में बहुत कारामद होता है कि अल्लाह तक, जब दिल में खौफ आता है तो खुद ही नफ्स को मारने की वो भी आती है। सही, अलहमदिल्ला। चलिए अब रेडी है नेक्स्ट सेशन के लिए, चलिए इंशाल्लाह।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए, आपने रूहानी खाने के साथ जिस्मानी खाना भी खा लिया, थोड़ी सी बातें अदब अदाब की खाने के, और मेरे लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम आफ्टर ब्रेक, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप कहेंगे ये तो अब आप हमें बच्चों वाली बातें बताने लगे हैं, तो जवाब ये है कि हम बच्चे ही हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, एटिकेट्स ऑफ फूड, खाने के पीने के सब कुछ, लेकिन हम खुद भूल जाते हैं। तो चंद चीज़ें जो हमारे नफ्स का हक है खाने पीने के अतबार से, तो पहली बात एक है कि खाना चाहिए, जैसे गाड़ी गैस या पेट्रोल के बगैर नहीं चलती ना, और इसी तरह आपका मेरा खाना भी इबादत है, पीना भी इबादत है। कुरान पाक में बहुत जगह ये बात है, कुलू वशरबू, कुलू खाओ वशरबू पियो, तो ये हुक्म है, अमर है, इंटरोगेटिव है, तो अगर आज के बाद जब भी खाएं पिएंगे तो उस वक़्त ये सोचकर खाइएगा कि ये अल्लाह का हुक्म है, तो वो खाना पीना भी इबादत है। बस लोग खाने पीने के लफ्ज़ को या इसको एक जरबुल मिसल के तौर पर बुरे मानों में समझते हैं। हाँ जी, ये तो खाने पीने के बहाने हैं और बस ही थोड़ा सा खिला लो पिला लो और इस तरह की चीज़ें। तो याद रखिए कि खाना पीना इबादत है और खाने पीने का असल मकसद कुव्वत हासिल करना ताकि अल्लाह की इबादत कर सकें। ये लिख लें, हम क्यों खाएं? ताकि कुव्वत हासिल हो और उसके बाद फिर हम अल्लाह की इबादत करें। और लज्जत और शौक के लिए नहीं खाना सिर्फ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हम भूख के बगैर नहीं खाते और जब खाते हैं तो सैर नहीं होते, यानी पेट भर के नहीं खाते। ईमान वाला इसलिए खाता है कि ताकि जिस्म को कुव्वत मिले और अल्लाह ताला की रज़ा के कामों में उस कुव्वत को इस्तेमाल करें। सवाल पैदा होता है, जो जो कुव्वत हमें मिलती है अमूमन और ख़ास तौर पे जिस दिन बहुत अच्छे खाने खाते हैं, खूब लेविश किस्म के, तो वो कहाँ इस्तेमाल होती है? असल बात खाना पीना नहीं है, असल बात है कि उस खाने को खाने के बाद क्या आपने किया है। ये एक क्वेश्चन मार्क खुद से रखिए कि जब आम तौर पे रोज़ घर में एक आम खाना खाती हूँ तो मेरी इबादत, मेरे मामलात, मेरे अल्लाह की रज़ा के काम करने की स्पीड क्या होती है, और जब बहुत अच्छा खाती हूँ तो क्या करती हूँ। ठीक है, चंद आदाब नोट करते हैं। नंबर एक, खाने से पहले। नंबर एक, हलाल और पाक चीज़ खाइए, वाजिब है। सूरह बकरा 172। और पाक से मुराद हलाल है, जिससे ना तो इस्लाम का कोई रूल टूटे और ना वो सेहत को ख़राब करे। फिर इसी तरह से खाने का अदब है कि सवाब हासिल करने की नीयत से खाएं और अल्लाह की रज़ा की खातिर खाएं। फिर हाथ साफ़ नहीं तो खाने से पहले धो लीजिए, बैठकर खाइए। दस्तरखान पर जो भी हो, ऐब छीनी ना कीजिए। नापसंद हो तो छोड़ दीजिए लेकिन नक्स ना निकालें। अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी कभी खाने में नक्स नहीं निकालते थे। अबू हुरैरा भी से ही ये बात हम तक पहुंचती है। बुखारी की रिवायत 3563 और मुस्लिम 2064। ना खाना होता तो छोड़ देते लेकिन ऐब ना निकालते। तो यहाँ ख़ास तौर पे फिर ब्रदर्स, बीवी सारा दिन मेहनत करके जो भी पकाती है खा लीजिए, कुछ ज़रूरी तो नहीं हमेशा बहुत ही अच्छा बने, लेकिन यह है कि बहरहाल उस पे नक्स निकालना और हमारा एक कल्चर का हिस्सा बन गया। जितनी देर खाते रहते हैं उस पे बातें करते रहते हैं, आज ये ज़्यादा नहीं हो गया, आज ये कम है, ज़रा भुना नहीं आपने, ज़्यादा ज़्यादा भुन गया, जल गया, क्या हो गया? छोड़िए आप इस बात को, बस खाइए और अल्लाह का शुक्र कीजिए। फिर इकट्ठे खाना चाहिए, घर के अफराद या मेहमान या घर के मुलाजिमों को भी साथ बैठना चाहिए। सूरत नूर में भी इसका रेफरेंस है और अबू दाऊद 3764। सोने और चांदी के बर्तनों में नहीं खाना चाहिए। बुखारी की रिवायत है 5632 और इस तरह, और मुस्लिम में भी हैं 5394। आपने फरमाया कि ये मुसलमानों के लिए जन्नत में और काफिरों के लिए दुनिया में है। अब आपके ज़हन सवाल आएगा, सिल्वर कोटेड चम्मच और आयरन, पहले तो प्योर गोल्ड के होते थे ना, तो अब अगर कोटिंग हो चुकी है तो क्या करें? बहुत आसान तरीका है, कोई एक इसका पूरा प्रोसेस है, मैंने किसी एक और को भेजा था लेकर, हमारे एक ब्रदर हैं तो वो केमिकल्स का कुछ काम करते हैं, तो उनको वो बर्तन देकर तो वो फ़ौरन उतरवा देते हैं, यानी बल्कि सोना भी थोड़ा सा हाथ में आ जाता है, चांदी का भी कुछ ऊपर जो कोटिंग है ये उतर जाती है। तो बहरहाल ऐसी चीज़ें ख़रीदनी नहीं चाहिए, ये वैसे भी एक ज़िंदगी का मकसद ना समझने वाली निशानी है। और प्लस ये कि दिल में फिर उस चीज़ की रग़बत, असल सोने के तो नहीं होते, बाद वक्त गोल्डन फैंसी स्टील चमक ऊपर ऐसे है, तो इससे ये तो लगता ही है ना कि रग़बत ख़त्म हो गई है या उस चीज़ की गुनाह या उसकी बुराई ख़त्म हो गई है, तो अवॉइड करना चाहिए। सिंपल बर्तन होने चाहिए, साफ़ सुथरे हों और सिंपल हों। फिर खाने में हमसायों को शरीक कीजिए, बुखारी की रिवायत है 2566, सुनी होगी आपने। थोड़ा सा खाना निकाल के आपने कहा अपनी हमसाई की दीवार पे रख दिया करो। अब आप देखिए इसमें हमसाएं हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम का कोई चक्कर नहीं है, तो कुछ ना कुछ खाना आपने हमसायों से शेयर करें। फिर इसी तरह मुसलमान भाइयों और दूसरे लोगों को भी खिलाइए, क्योंकि इससे मोहब्बत फैलती है। सही उलजामे 1096 और वो मारूफ रिवायत जो आपने कई बार सुनी, अफशुस सलाम वत्थमु ताम, सलाम को आम करो, खाना खिलाओ जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया, और भाई बन बन करो। फिर सबसे बड़ी बात, इसको बड़ा बड़ा करके लिख लीजिए, खाने में इसराफ नहीं करना। अराफ 31, इसराफ क्या होता है? बहुत ज़्यादा खाना बना लेना और खा ना सकना, और सजाने में इतना पैसा लगा देना या एफर्ट लगा देना कि खाने को दिल ही ना करे कि ये अब डिज़ाइन ही टूट जाएगा आपका। और इसी तरह ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब खाना खाने के दौरान के क्या आदाब हैं? नंबर एक, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, फतहुल बारी 493 जिल्द नंबर 9। बिस्मिल्लाह ना पढ़ें तो शैतान उस खाने में हिस्सा दार होता है। शुरू में भूल जाएं तो बीच में बिस्मिल्लाह ही अव्वलुहू व आखिरुहू पढ़ लीजिए। ये अबू दाऊद की रिवायत है 3767, तिर्मिज़ी 1859। बिस्मिल्लाह ऊंची आवाज़ से पढ़ें ताकि जो लोग नहीं पढ़ चुके, भूल गए थे, याद आ जाए। फिर अगला अदब क्या है? दाएं हाथ से खाएं, राइट हैंड से। सही मुस्लिम 5265। तीन उंगलियों से खाएं, ये जो तीन उंगलियां होती है ना, ये देखें, ये सबसे बड़ी और दो उंगलियां, इस तरह खाना चाहिए। और इसी तरह तीन, बल्कि बास कहते हैं कि शहादत की उंगली और अंगुश्ते शहादत और बीच, यानी ये तीन। मसलन अगर आपको मैं इस तरह से दिखाऊं तो ये शहाद, ये कौन सा अंगूठा, ये कौन सी है क्या अंगूठा, ये और ये वाली, यानी ये तीन उंगलियां, ये देखिए, ये पहली दो को छोड़ ऐसे कर ले, तो ऐसे खाना चाहिए, ये बेस्ट तरीका है। सही मुस्लिम में इसका तरीका मौजूद है 5297। फिर अगला अदब क्या है कि अपने आगे से खाइए, हर तरफ प्लेट में हाथ नहीं मारने चाहिए और दरमियान में से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बर्तन के अंदर दरमियान में रहमत उतरती है। अगर आप दरमियान पहले खा लेंगे तो रहमत रुक जाएगी। अपने आगे से खाए, अपने फरमाया कुल भी यमीनिक, खाओ आप दाएँ हाथ से, और मिम्मा ये लीक, जो तुम्हारे आगे है। और इसके बहुत सारे रेफरेंस हैं, आप सिर्फ एक नोट कर लीजिए, सही बुखारी 5376। सही बुखारी में ये हदीस कम अज़ कम तीन दफ़ा है। फिर इसी तरह खाना अच्छी तरह चबा कर खाइए, छोटे लुकमे लें और जल्दी ना करें। फिर इसी तरह खाने के दौरान अगर कोई हड्डी या मछली का कांटा या कंकर वगैरह आ जाए तो उसको निकाल दें, यदि खामखा ये सोच कर कि मैं इसको खा सकता हूँ, ये वैसे भी इंसान को नुकसान दे सकती है चीज़, टेक लगा कर नहीं खाना चाहिए, तकब्बुर की अलामत है। बुखारी 5398। लेट कर नहीं खाना चाहिए, आपने इसके नुकसान बताए, अबू दाऊद 3774। फिर खाने के दौरान दूसरों पर नज़र डालने से गुरेज कीजिए, दूसरों को बुरा लगता है जब खाना खाने के दौरान आप उनको भी देखें या कोई खा रहा है और आप उसको देखते रहें, इसे ऐसे लगता है कि बुरा, मतलब अगले बंदे की तरफ आप इश्तिहा से देख रहे हैं। फिर इस तरह मुंह बंद करके खाएं, ना दूसरों पर छींटे पड़े और ना बैठने वालों को तकलीफ हो, आवाज़ें नहीं निकालनी चाहिए। बिलीव में कुछ लोगों के साथ बैठ के खाना मुहाल हो जाता है, चिप चिप की आवाज़ें आती हैं, चुस्कियाँ भरना, जैसे पीते हैं तो चुस्क करते हैं, ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ लगती है। फिर इसी तरह खाना खाते वक्त अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, अबू दाऊद 3765। थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार कीजिए, भाप उठ रही हो ऐसी गर्म चीज़ और बहुत ठंडी, दोनों चीज़ें नुकसान देती हैं। फिर अगली सुन्नत क्या है कि खाने को हकीर नहीं समझना चाहिए, खाना नेमत है और अल्लाह की नेमतों को हकीर समझना नेमतों का जवाल बन जाती है। फिर सब लोग बैठे हों खाना खाने के लिए तो आप सबसे पहले आगे हाथ ना बढ़ाएं, ये नामुनासिब बात है। फलों से इब्तदा कीजिए, सूरत वाकया 2021। जन्नत के लोगों को खिलाया जाएगा तो फल खिलाए जाएंगे, और हमारे कल्चर में क्या, अब आपको तो हैरत होगी, हम तो फल बाद में खाते हैं। पूरा इस पर एक आर्टिकल मैं कहीं जगह शेयर कर चुकी हूँ कि फ्रूट इजीली डाइजेस्टेबल है, जूद हजम है। हम कब खाते हैं? जब हु यहाँ तक भर चुका होता है, फिर कहता है फ्रूट ले आए, होगा क्या, देखिए पेट में तो नीचे बिरयानी है, फिर ऊपर कोरमा है, फिर उसके ऊपर नान है, फिर पालक गोश्त है, फिर कबाब है, ये पहाड़ियाँ बनी हुई, ऊपर आपने बेचारा सेब डाल दिया। सेब को तो हजम होना है, अब जब हजम होता है तो उसमें से एसिड निकलता है, अब जब एसिड निकलेगा तो जगह नहीं बन रही, उसको बाहर जाना है, तो फिर वो आपकी बिरयानी कोरमे के अंदर से गुजरना चाह रहा है तो फिर आपका सीना जलेगा। पहले रखेंगे तो क्या होगा, ये आपका ड्रेनेज है, गटर साफ हो जाता है ना। फ्रूट पहले खाइए, उससे आपका इंशाल्लाह बाकी खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। फिर इसी तरह छोटे लुकमे लीजिए, बड़ा लुकमा हिर्स की अलामत है, अपने नसीब से खाना है, ज़्यादा लालच करेंगे तो फिर वो दो चार लुकमों के बाद ही गले में फंस जाएगा। जल्दी जल्दी नहीं खाएं, इससे दूसरों को भी वहशत होती है और ख़तरा भी होता है गले में फंसने का। एक लुकमा नीचे जाने के बाद दूसरा डालना चाहिए, और आप ज़रा सोचें जब इफ्तारी के टेबलों पे बैठे होते हैं, ऐसे दोनों हाथों से, जी दोनों हाथ से नहीं खाना चाहिए, राइट है तो लेफ्ट है, एक तो लेफ्ट है ही ना, अगर बर्गर आपका राइट हैंड में है तो जूस आपका या आपकी स्मूदी या आपका मिल्क शेक लेफ्ट में होगा, मुसलमान ऐसे नहीं खाते। फिर इसी तरह से अगर लुकमा गिर जाए तो उसको उठाइए, बिस्मिल्लाह पढ़िए, झाड़िए और खा लें, वरना शैतान के लिए वो रह जाता है। सही मुस्लिम 5306। फिर इसके बाद आप देखिए कि कुछ फल होते हैं उनमें गुठलियाँ होती हैं या छिलके होते हैं या गोश्त होते हैं या हड्डियाँ हैं, छिलके अंडे हैं तो उसके छिलके सेम प्लेट में उसके छिलके नहीं रखने चाहिए, अलग रखिए वरना देखने वाले को बुरा लगता है। और इस तरह से बचा हुआ खाना वापस सही खाने में नहीं डालना चाहिए, ये भी सेहत के भी खिलाफ है। खाने में मक्खी गिर जाए तो उसको निकाल कर खा सकते हैं खाने को बाद में। बुखारी 3320। फिर इसी तरह अगर बड़े लोग हैं, अहले इल्म, वालदैन या बुज़ुर्ग, तो पहले उनको पेश कीजिए, उनके करीब करें, वो डाल लें या आप उनको डाल दें। फिर बीवी को हाथ से खिलाने पर सवाब है। आज शोहरों की शामत आ गई है। बुखारी की रिवायत है 1295, मुस्लिम 4209। शोहर को कहा करें कि एक लुकमा आपके मुंह में डाल दें। कभी किसी ने ये सुन्नत पूरी की? आज तक तो नहीं की। वो कहेंगे बेगम आपको क्या हो गया। तो आपका सवाल एक और भी होगा, क्या हम भी अपने शौहर के मुंह में खाने का लुकमा डाल सकते हैं? अगर अच्छे ताल्लुक है तो डाल दीजिए, वरना वो बदला ले लेंगे आपसे। हैं, बहरहाल देखिए ये मोहब्बत की बातें हैं। अच्छा, ये जो चीज़ आज हमारे लग गई ना, जरासीमों वाली, हाथ लग गया जरासीम, उसका ग्लास, उसका पानी, ये मुझे तो कभी नहीं समझ आती। बहरहाल हदीस बीवी के लिए है कि बीवी के मुंह में एक लुकमा डाल दें। शौहर की तरफ से मैं ये ग्रेटफुलनेस है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे लिए खाना बनाया है। फिर इसी तरह से अगर आपको ये लगे कि कुछ लोगों ने खाना नहीं खाया, कुछ खा रहे हैं, तो जो नहीं खाते उनको कहना चाहिए। कई लोग रख के कह रहे होते हैं ना ही खाएं दो चाय, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। सूरह ज़ारिया 27, हज़रत इब्राहिम ने खाना रखा नहीं फरिश्तों के आगे, बल्कि क्या खाइए, तो कहना चाहिए कि खाएं। और हम क्या कहते हैं, चाय तो आप पीते नहीं, ठंडा आप पी कर आए होंगे, और वैसे ही शुगर आपको है, मीठा आप खाएंगे नहीं, नमकीन खाएंगे नहीं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तो फिर हम बैठे ऐसे ही। तो मेहमान नवाजी एक अपनी जगह, ये आगे इंशाल्लाह परसों के परसों इंशाल्लाह जो थर्ड टॉपिक होगा इस वीक का, उसमें इस पर भी बात होगी अल्लाह ने चाहा। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बुखार, अब अल्लाह की नेमतें हैं तो फिर हिसाब से खाइए। 5393। मैंने एक जगह एक बात शेयर की थी, उसका बहुत फ़ायदा हुआ, बताऊं आपको। ऐसी तसव्वुर में लिखिए कि आपके नसीब में 20 किलो चावल है, जब तक आप वो 20 किलो चावल खाएंगे नहीं आपको मौत नहीं आएगी। अब देख लीजिए, आप 1 साल में खा लें या आप 10 साल में खा लें, अपनी उम्र लंबी करने के लिए थोड़ा खाइए, ताकि आपके हिस्से का नसीब का जो आप थोड़ा थोड़ा करके खाते ही रहें। फिर जब खाना कम हो तो दूसरों के लिए इसार कर दे। याद है सहाबी, सूरह हशर आयत 9 की तफसीर जाकर सुन ले, सारी रात खुद मतलब खुद मेहमान के सामने अंधेरे में खिला ऐसे ही खाते रहे, लेकिन मेहमान खा गया, उसको नहीं पता चला कि इन्होंने खुद नहीं खाया। प्लेट पूरी साफ कीजिए। सही मुस्लिम 5306। और हाथ से चाटते हुए भी झिझकना नहीं चाहिए, जो खाना प्लेट में रहता है ये शैतान का हिस्सा है, और उंगलियां भी चाट लीजिए। मुस्लिम 5306, बुखारी 546 5456। अब इस उंगलियों को चाटने में क्या बुराई है, आप देखिए कि उंगलियों से, आप लोग कहते हैं हाँ आप उंगलियों से चाटें तो आटा गूंथता है, खाना पकता है, हाथ लगते हैं कि नहीं लगते हैं? फिर इसी तरह रोटी के साथ हाथ नहीं साफ करने चाहिए। बाज़ दफ़ा लोग रोटी के साथ इस तरह की चीज़ें लगा देते हैं, फिर बाकी सोचते हैं कि ये बची खुची रोटी है, वो उसको फेंक देते हैं। असल बात यह है कि आप देखिए कि इंसान को इस तरीके से खाना चाहिए कि देखने में महज़ब भी लगे और अल्लाह की नेमत भी इस्तेमाल हो। अब खा लिया, अब क्या करें, खाने के बाद के आदाब। नंबर एक, दिल से शुक्र कीजिए, ज़ुबान से एतराफ़ कीजिए। जिस मुसलमान खाने जो मुसलमान खाने के बाद अपने रब की हम्द करता है, अल्लाह ताला उससे राजी होता है, उसका हिसाब क्या लेगा, और ये नबी की इत्तबा है। बुखारी 5458। फिर इस तरह खाना खिलाने वाले का शुक्रिया अदा कीजिए और इसके लिए दुआ करें। तिर्मिजी 1956। किस किस को आती है दुआ खाना खिलाने वाले की, पढ़ दें। कितनी दावतों में लोग ये दुआ दूसरे को देते हैं, अब आप तो देते ही होंगे, आम दावतों में होती है, शादियों में 500-500 बंदा आता है, वो दावत ये दुआ दे के जाता है, नहीं देते, देना चाहिए। फिर इसी तरह अगर आपका कोई रोज़ा खुलवाए, अफ्तरइंदकुमुस्साइमून वकलतामकुमुलअब्रार वसल्लतअलैकुमुलमलाइका, अबू दाऊद 3854 और मुसनद अहमद 1201। 1 2 2 0 1, दो दफ़ा दो है। रोज़ेदार तुम्हारे यहाँ इफ्तार किया करें, नेक लोग तुम्हारा खाना खाएं और फरिश्ते तुम्हें दुआएं दिया करें। फिर इसी तरह खाने के बाद कुल्ली कीजिए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल था। बुखारी 5454। खाने के असर को ख़त्म करने के लिए हाथ धोना चाहिए, अबू दाऊद 3852। फिर इसी तरह से खिलाल करना दांतों का, जिसको आप टूथपिक कह लीजिए, और धागे से किसी से इसको भी निकाल देना चाहिए। मिसवाक या ब्रश करना चाहिए, मिसवाक अफजल है खाना खाने के बाद। अगर ऊँट के गोश्त की कोई चीज़ खाई है तो वुज़ू भी करें अगली नमाज से पहले, सही मुस्लिम 802। और खाने के बाद किसी के घर ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए, सूरत अहज़ाब 53। घर वाले अगर रोक लें थोड़ी देर, इट्स ओके, लेकिन इतनी देर नहीं रुकना चाहिए कि फिर भूख लग जाए, फिर कहते हैं अब क्या खाएंगे, और वो चाय पानी और कावे और कावा जब पी के बैठे रहेंगे तो फिर भूख लग जाएगी, फिर साथ ही होगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अगर किसी के घर खाना खाएं तो ज़बरदस्ती करके साथ नहीं लेकर आना चाहिए, इल्ला ये कि घर वाला ही दे दे। खाना खाने के फौरन बाद सोना नहीं चाहिए, यह हेल्थ के बहुत खिलाफ है और बीमारियां आती हैं। और सबसे बढ़कर यह है कि फिर इस खाने के बाद खूब अच्छे काम करें, दुआ कीजिए, शुक्र कीजिए और अमल बिल जवारे कीजिए। इस ताकत से जो आपको किसी के खाने के साथ मिली, कोई भी नेकी आप करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ही हिस्सेदार होगा। फिर कुछ चंद एक दो बातें, लहसुन प्याज खाकर नमाज के लिए नहीं आना चाहिए, करें आए तो फिर उससे पहले अच्छी तरह से तहारत हासिल कीजिए, फरिश्तों को ये बू अच्छी नहीं लगती। बुखारी की रिवायत 5452 और मुस्लिम 1252। रास्तों में नहीं खाना चाहिए, इमाम अहमद कहते हैं, सुनिएगा, अब ये जो कल्चर है रोड पे चलते फिरते खाने का, खाना और नींद हमारे नज़दीक पर्दे की चीज़ें हैं, यानी ना हम किसी के सामने सोते हैं और ना किसी के सामने खाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे के अमल करें। खाने के साथ बहुत सारी चीज़ें तो पीने की आ ही जाती हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो पीने की ज़रूरी हैं उसमें आप थोड़ी वो भी नोट कीजिए, जैसे बाकी चीज़ें थी वो सारी इसी में ही हैं जो पहले मैंने बोली, आप उसको एक जुमले में लिख लें कि खाने के जितने आदाब हैं वो पीने के भी हैं। बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, पहली बात ये है कि 3 वक्फ़ों के साथ पीना चाहिए। अल्लाह के नबी 3 सांस रोक कर पीते थे, बिस्मिल्लाह से शुरू करते और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहते, सही जामे 4956 और सिलसिलातु सहीहा में 272 जिल्द 2 में। और इससे आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। फिर घूंट घूंट पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी जिस्म में जाए तो वो खाने का हिस्सा बन जाता है। फिर इसी तरह ये बुखारी की रिवायत थी 5631। बर्तन में सांस नहीं लेना चाहिए पीने के दौरान, आपने इसे रोका, बुखारी 5630। फिर सांस लेते हुए बर्तन को मुंह से थोड़ा सा दूर कर लीजिए, मौता इमाम मालिक 925। पीने में भी इसराफ नहीं करना चाहिए, आराफ 31 और बुखारी 5397। फिर इसी तरह से कोई चीज़ लेनी देनी हो तो दाएं हाथ से दीजिए, ये सुन्नत है, बुखारी 5612। फिर इसी तरह से बर्तन को दाई तरफ से शुरू करें और किसी को देने के लिए उससे अगले से, मतलब राइट हैंड से शुरू करते जाएं, एक ही बर्तन में अगर पी रहे हैं तो, अगर आप उसको नहीं देना चाह रहे किसी और को देना तो पहले उससे इजाज़त लीजिए, क्या मैं दूसरे को दे दूं। फिर इसी तरह पिलाने वाले को खुद बाद में पीना चाहिए, अबू दाऊद 3725। और जिस तरह खाना मना है इस तरह सोने चांदी के बर्तनों में पीना भी हराम है। दूध पीने की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिदना मिन्हु, अबू दाऊद 3730। अब आपका बच्चा सबसे पहले क्या पीता, तो आप उसको दुआ याद कराएंगे, आप पढ़िए, जब बच्चे को दूध दे बिस्मिल्लाह खुद माँ पढ़े, बच्चा सुने फिर मुंह में डालेगा, पी चुका हो या पी रहा है तो अल्लाहुम्मा बारिक लना फी, ये दुआ दीजिए। दूध पीने के बाद कोशिश करें कि ज़रूर कुली कीजिए, इब्ने माजा 3499। फिर इसी तरह वही बात है, मशरूब में मक्खी गिर गई तो उसको गिराना नहीं बल्कि मक्खी को डुबो कर निकाल दीजिए, फिर उसको पी सकते हैं, 3844। गाय का दूध पसंदीदा है, सहील जामे 4059। अल्लाह के नबी को ठंडा मीठा मशरूब पसंद है, यानी हॉट ड्रिंक की बजाय कोल्ड ड्रिंक, सहील जामे 4627। अल्लाह ताला आपको मुझे जो भी हम खाते पीते हैं उसका बेहतरीन हक अदा करने वाला बना दे। तो सेल्फ ग्रूमिंग के अंदर हमारे जो आदात हैं ये बहुत मदद करती हैं। तो सोने के आदाब थोड़े देखें, ये सोने के नहीं है, सोने के आदाब, स्लीपिंग मैनर्स। नींद अल्लाह की नेमत है, इंसान के लिए नींद नागुजीर है। आप देखिए इस पैदाइश से मौत तक हम कितनी दफ़ा सोते हैं और कितनी दफ़ा उठते हैं। अक्लमंद वो है जो हर नींद के वक्त मौत को याद करे। मौत का, सोने का सबसे बड़ा अदब, हर सोते वक्त मौत को याद कीजिए, क्योंकि ये मौत एक दिन हम सोएंगे तो उठेंगे नहीं। क्यों कहते हैं तो आप पढ़ते हैं अल्लामा बिस्मी का अमूतु वाहिया। फिर इसी तरह से याद रखिए, सोने से पहले ये नियत कीजिए, इसलिए सो रही हूँ ताकि वक्त पे उठकर नमाज अदा कर सकूँ और थके हुए जिस्म को राहत दूँ। तो इस अमल से आपकी नींद इबादत बन जाएगी, क्योंकि इंसान को हर उस अमल का अजर मिलता है जो वो अच्छी नीयत से कर देता है। फिर इसी तरह से सफ़र में रात को अकेले नहीं जाना चाहिए ना सोना चाहिए। मुस्नद अहमद की रिवायत है 5650। खुलासा क्या है? अकेले रात बिताना या सफ़र करना पसंदीदा नहीं है। आपने फरमाया जब इंसान अकेले रात गुजारता है तो शैतान उससे खेलता है। ये बात बड़ी अहम है, गौर से समझिएगा। अकेले में शैतान बहुत आता है, अपने घरों में भी। कोशिश करें कि बिल्कुल अकेले बच्चे को ना छोड़ें, बिल्कुल अकेला भी नहीं होना चाहिए और एक बिस्तर पे दो बच्चे भी नहीं होने चाहिए। ये तो हदीस आपने कहीं जगह पढ़ी होगी। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब इंसान सोने का इरादा करे तो उसको उससे पहले वुज़ू कर लेना चाहिए। बुखारी की रिवायत है कि जब इंसान ताहिर हालत में सोता है हर करवट पे फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है। फिर इसी तरह से बिल्कुल खुली जगह बग़ैर किसी ओट के, यानी मसलन आप किसी छत पे हैं जिसकी दीवारें नहीं हैं, उस पे ऐसे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इंसान रात को करवट ले और नीचे गिर सकता है। अबू दाऊद की रिवायत 5041 है। अपने नफ्स को हर ख़तरे से बचा लेना चाहिए। फिर इसी तरह से सतर का अहतमाम कीजिए कि रात को सोते में सतर ना खुल जाए। फिर इसी तरह इस हाल में सोइए, ये भी हाईलाइट कीजिएगा, ये है मामलात। इस हाल में सोइए कि किसी मुसलमान के लिए दिल में कीना और हसद ना हो। सूरत हशर आयत 10 में तो दुआ सिखा दी कि हमारे दिलों में दूसरे मोमिनों के लिए कोई कीना अल्लाह ना रखना, और ऐसा शख्स जन्नती है जो अपने दिल से दूसरों का हसद कीना निकाल दे। सोने से पहले पेट भरकर खाना खाने से गुरेज कीजिए, ये नुकसानदेह भी होगा और आपकी नींद ज़्यादा हो जाएगी, फजर पे नहीं उठ सकेंगे और पेट भी बोझल होगा, सेहत ख़राब होगी। फिर इसी तरह से सोने से पहले सुरमा लगाना भी सुन्नत है। तिर्मिज़ी 1757, आंखों की हिफाजत होती प्योर सुरमा। अब ये नहीं कि सोते वक्त आप आईलाइनर और काजल लगा के फिरें कि ये सुन्नत है, सुरमा एक ख़ास थोड़ा सा मंगा के रख ले, सोते वक्त लगा लीजिए। फिर इसी तरह अगर हाथों में कोई खाने का असर, कोई गंदगी लगी है तो सोने से पहले उसको धो लीजिए। अबू दाऊद 3852। वजह, हाथों में से खाने की खुशबू आएगी, रात को चींटियाँ आ जाएंगी किस करने, तो कीड़े मकोड़े आने का डर होता है। अब हमारे घर तो इतने माशाल्लाह प्योर और हाइजीनिक है, लेकिन लोग खुली जगहों पे भी सोते थे तो ये चीज़ें फ़ायदा देती हैं। और सोने से पहले जो वुज़ू करना है वो हदीस बुखारी की है 1247, शैतान से भी हिफाजत होती है। फिर इसी तरह जुनाबत की हालत में अगर गुसल में सुस्ती हो तो सोने से पहले जिस्म को पाक कीजिए, वुज़ू या तयम्मुम कर लीजिए। बुखारी 288, मुस्लिम 699। अगर फजर से पहले ना उठ सकते हो तो सोने से पहले वितर पढ़ लीजिए। बुखारी 1981, मुस्लिम 1672। और सोने से पहले तौबा कर लीजिए, क्या पता उठेंगे कि नहीं उठेंगे। फिर इसी तरह सोने से पहले कुरान पाक की कुछ सूरतों की तिलावत, मसलन आप सभी जानते हैं जी, आयतुल कुर्सी पढ़िए, बुखारी 231, सूरत बकरा की आखिरी दो आयतें 4008 और मुस्लिम 1880, और मुवज़्ज़तैन इसकी भी तिलावत करनी है। आजकल सोने जागने के अज़कार मिलते हैं, आप उनको भी कम से कम सुनते जाइए और साथ पढ़ते जाइए, लेकिन इख्तमाम करना चाहिए। फिर सोने के वक्त घर के दरवाज़ों को बंद करना चाहिए, शैतान कोई बंद दरवाज़ा नहीं खोलता। मुस्लिम की रिवायत है 5246। घर की खिड़कियां और बाहर वाले रास्तों को बंद करें ताकि बाहर से कोई ऐसी खतरनाक चीज़ ना आ सके। यानी मतलब यह कि केयरफुल रहकर सोइए, चिराग बुझाकर सोइए, ये जो लाइट चलती है ना, कैंडल लाइट या मोमबत्ती है, इसको बुझा दीजिए। अबू दाऊद की रिवायत है 5247 और बुखारी 6295। एक शैतान है जो सिर्फ रात को आग लगाने का काम करता है। कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो उससे बचिए, यानी कोई ख़तरनाक चीज़ अपने पास ना रखिए। फिर जिन बर्तनों में खाना या पानी रखा उसको ढांप दे। बस लोग किचन काउंटर पे खुला खाना छोड़ देते हैं, ये बहुत ही नामुनासिब है। सही मुस्लिम की रिवायत है 5246। फिर सोने से पहले नफ्स का मुहासिबा। पीछे पढ़कर आए हैं हम लोग, आज क्या किया, क्या बोली, लोगों से कैसा मामला रहा, अल्लाह के हकूक में किस कदर अदायगी। ये सारे पॉइंट इंशाल्लाह आपकी इस वीक की चेकलिस्ट में डलेंगे। कोई कमी पेशी नज़र आए तो इस्तग़फ़ार कीजिए और अगले दिन उस काम को अच्छा करने की नीयत कीजिए। और जब सोएं तो कब्र की तवील नींद को याद करिए, जहां अंधेरा होगा, ना दोस्त ना साथी, सिर्फ अमल सवाले होंगे या फिर बुरे अमल होंगे, इसको याद करते हुए सोइए। फिर इसी तरह सोने से पहले नीयत कीजिए कि मैं तहज्जुद के लिए उठूंगी। नीयत करके सो जाए, ना भी उठ सके तो अजर होगा, लेकिन नीयत खालिस होनी चाहिए। इब्ने माजा 1344। बिस्तर को पल्लू, कपड़े के पल्लू से 3 बार झाड़िए और बिस्मिल्लाह कहिए। बुखारी 6320, मुस्लिम 6892। और सोते वक्त मुवज़्ज़तैन पढ़कर हाथों पे फूंक मारें इस तरह से, और इसके बाद इसको जहां तक भी हाथ फैला जा सके फेंक ले, जिस्म पे फेर ले। नबी सल्लम की ये सुन्नत है। फिर इसी तरह जब जल्दी सोएं तो बाजू फैला लें, देर से सोएं तो हथेली पे टेक लगाएं। यानी जल्दी सोएं से मुराद ये है कि स्ट्रेच कर सकते हैं आप बॉडी को, और अगर आप अपनी रिलैक्स्ड होकर सही नींद सो रहे हैं तो ये हाथ जो है ये इस तरह से, यानी बाजू के हाथ के नीचे, फिर बाद में जिधर भी चले जाएं। और ये रिवायत सही जामे की है 4752। ईशा पढ़े बगैर नहीं सो सकते, ये बड़ा बड़ा लिख लें, ईशा के बगैर नहीं सो सकते, जैसे सीट बेल्ट लगाए बगैर गाड़ी में सफ़र नहीं करते। ये बुखारी की रिवायत है 5 6 8। ये सीट बेल्ट लगाने वाली बात बुखारी में नहीं है, इसको ना लिखिएगा। फिर चित लेट कर, सीधा लेट कर एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर नहीं रखना चाहिए, लेटने का बड़ा ही बेहुदा तरीका होता है। ये मुस्लिम 5501 है और सतर खुलने का डर होता है। दाई करवट पे सोइए, कैसे कि लेफ्ट साइड अप हो और राइट साइड नीचे हो। बुखारी 247 और 6311। दाएं हाथ को गाल के नीचे रखकर दुआ कीजिए। 3 बार ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा किनी अजाबका यौम तबसु इबादक। अबू दाऊद 5059। ए अल्लाह, जिस दिन तो अपने बंदों को उठाएगा तो मुझे अपने अजाब से महफूज रखना। ये दुआ पढ़कर सोएं, और आप देखिए हर दुआ का मीनिंग है। फिर नींद से पहले के अस्कार पढ़ने की हिर्स कीजिए, जो पढ़ सकते हैं पढ़ें। फिर अल्लाहुम्मा बिस्मी का अमूतु व अहया, बुखारी 7395 और मुस्लिम 6882 है। तो आप देखिए कि जब इतने काम करके सोएंगे तो फिर सोना इबादत बनेगा। अब उठ गए सुबह नींद से बेदारी, ये भी एक नेमत है, एक नई जिंदगी, एक नया दिन, नए अमाल करने का अल्लाह ने आपको मौका दिया। एक दिन हम नहीं उठेंगे, आज उठ गए हैं तो शुक्र कीजिए। पहली चीज जागने के आदाब में क्या है, कायनात पे गौर व फिक्र। इन नफी खल्क़ समावाती वल अर्थ से लेकर आखिर तक सूरत आले इमरान का जो रुकू है उसका मैसेज क्या है, तदब्बुर। कायनात में गौर व फिक्र करना चाहिए। फिर बेदार होकर चेहरे को दोनों हाथों से मले इस तरह से, जैसे वो नींद का खुमार दूर किया जाता है। बुखारी की रिवायत है 4570। फिर जिक्र कीजिए इस दुआ के साथ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, पढ़ लें भी, अभी भी आप में से कहीं उठे होंगे। बस वो पढ़ लिए, ख़त्म। एक जज्बे के साथ पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सोचिए ज़रा, सारी तारीफें उसने जिसने ज़िंदा किया, बाद अमा अमातना उसके बाद के हमें मार दिया, व इलैहि नुशूर और उसी की तरफ पलटना है, तो पहाड़ों की तरह दुआएं ना पढ़ा करें, रटी हुई शौक के साथ तदब्बुर के साथ। फिर बेदार होते मिसवाक करना अल्लाह के नबी का अमल था, मुस्लिम 5 9 6। 3 दफ़ा हाथों को धोइए, पता नहीं रात हाथ कहाँ लगा होगा, सही मुस्लिम 6343 और बुखारी 162। वुजू करना चाहिए, बुखारी 3295। और कुव्वत से, ये जो लेफ्ट हैंड है ना, यहाँ हाथ रख के, ये जो हड्डी होती है ना इधर, यहाँ नहीं इधर, तीन दफ़ा पूरी ताकत से नाक झाड़ना सुन्नत है। बुखारी की रिवायत है 3 to 9 5। आपने फरमाया ये कोठरी, ये जो है ना जगह, शैतान इधर रात गुजारता है, तो इसको जब आप झाड़ लेते हैं, इस्तिनसार कहते हैं इसको, स्वा से नसर जैसे ना वो लफ्ज़ है, तो शैतान फिर जिस्म से निकल जाता है। ये यहाँ रख के ऐसे इधर इसको करेंगे, और हाथ में ज़ाहिर कोई नैपकिन है, या अगर आप टूटी में पानी के साथ करें तो बहुत अच्छा। 3 दफ़ा मुबालगे के साथ निकालें, इवन कुछ भी ना निकले, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके जिस नाक में कोई रतूबत हो, लेकिन इंशाल्लाह शैतान इससे भाग जाएगा। फिर उसके बाद कोशिश कीजिए, दो नफिल पढ़िए, नमाज़ पढ़नी है, बुखारी 1142, और घर वालों को जगाना है ताकि वो भी नमाज़ पढ़ें। अबू दाऊद 1308। जल्दी बेदार होना चाहिए, बहुत देर तक नहीं सोते रहना चाहिए। तिरमिजी 1212। फिर बिस्तर को जागने के बाद क्या करना चाहिए, ये जुमला आप अपने बच्चों को सिखाएंगे। उठते ही बिस्तर को तरतीब से रखिए, लपेटिए, ये भी इस्लामी अदब है, क्योंकि जब तक घर में बिस्तर खुले रहते हैं दोबारा सोने को दिल करता है। आजमा कर देख लें, आप उठते ही सबसे पहले अपना बिस्तर सही कर दें। अगर आप सफाई पसंद है नमाज के बाद, आप सिर्फ इसलिए भी नहीं सोएंगी कि बिस्तर सही हो गए, और वो गरम गरम क्विल्ट, और अब्बास तो कहते ठहरो मैं भी आई, उसको ऐसे ही छोड़ के सीधा जाते हैं, पूरा बिस्तर उठा दीजिए, उसको हटा दें, चीज़ों को सीधा कर दें, ताकि आपको फिर दोबारा सोने का दिल ना करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जैसे हम अब जागते हैं, अल्लाह ताला अभी हमें जागता ही रखे, और वो वक्त ना आ जाए कि जिसके बाद हम लोग फिर जाग ही ना सकें। अब आप देखिए कि दीन तहारत का दीन भी है, तो पाकी का दीन है, कज़ाए हाजत, जिसम में ज़िंदगी दिन भर कुछ ना कुछ चीज़ें जो जाती हैं उनको बाहर निकलना होता है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को, नंबर एक अमीर या गरीब, बादशाह या वज़ीर, आलिम या मुतालिम, हर एक के साथ कुछ ऐसी चीज़ें लगाई हैं जो उसको खुद अपनी करनी होती हैं। इससे भी ज़्यादा पर्सनल चीज़ें क्या होंगी कि उस पर बंदे को अजर मिले। कज़ाए हाजत, जिसम से एक्सक्रीशंस का निकलना, वेस्ट का डिस्पोजल, लेकिन उसमें अजर मिले, इतना प्यारा दीन है। एक शख्स ने ताना दिया था जो यहूदुल नस्ल था, कहने लगा तो वो मुसलमानों, तुम्हारा नबी तुम्हें बैतुल खला में जाने के भी तरीके सिखाता है, टॉयलेट कैसे यूज़ करना है। तो साहबी ने कहा हाँ, हमें फ़ख्र है, अल्लाह ने हमें वो लीडर, वो कायद दिया जो हमें बैतुल खला के भी तरीके सिखाता है। तो ये भी देखिए कि आपका बैतुल खला या रेस्टरूम में जाना भी इबादत है। क्या करें, इसके चंद आदाब को क्लियर लिख लें। दूर जगह तलाश करें, पहले लोग खुली जगहों पर जाते थे, तो इंसानों से थोड़ा दूर जाना चाहिए, तिर्मिज़ी 20, ताकि लोग देख ना सकें, किसी की ओट में चले जाएं। खैर हमें तो इसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज़ ऐसी हाथ में ना लेकर जाएं जिसमें खुला हुआ अल्लाह का जिक्र हो, कुरान मजीद का कोई वर्का पेज, अगर आपके बैग में, और आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, इट्स ओके, खुली चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरह अल्लाह का नाम लिखा, नबी का नाम, ऐसी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, ये वैसे भी इस्लामी कल्चर नहीं है। फिर इसी तरह अगर आपकी जान पहचान के कुछ लोग पास हैं, तो उनके हवाले सामान करके खुद खाली हाथ जाइए, पानी साथ लेकर जाएं और पानी इस्तेमाल कीजिए। बुखारी 143। खुली जगहों पे हों, पानी नहीं है तो फिर वही, जैसे हम तहारत में इसकी काफ़ी डिटेल्स पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुनासिब जगह इस्तेमाल कीजिए, और बिल्कुल नीचे बैठकर अपना सतर खोलिए, छींटों से बचना चाहिए, सायादार जगहों पर नहीं रुक करना चाहिए इस काम को, मुस्लिम 618। और इसी तरह गुसल करते हुए भी पर्दे और ओट का इंतज़ाम करना चाहिए। ये तकरीबन सारे वही मैनर्स हैं जो आप लोग किताबो तहारत के नाते से पढ़ चुके हैं। खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, इल्ला ये कि उसकी कोई रीज़न हो। और इसी तरह से अंदर जाने से पहले दुआ पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाह ही के बाद बोलिए, क्या दुआ है बात वॉशरूम में जाने की, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। और अंदर जाते हुए लेफ़्ट फुट यानी बायां पाँव जो है वो अंदर रखिए, क्योंकि बैतुल खला गंदगी की जगह है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बिला वजह अंदर ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, और पूरी फौरन फारिग होते ही अंदर आ जाए, अगर मौत आ गई तो क्या होगा। कुछ बच्चे कुछ बड़े बहुत देर लगाते, तो उनको सिर्फ ये समझाएं कि अगर उस दौरान वक्त आ गया तो क्या हम चाहेंगे कि हमारी डेड बॉडी वॉशरूम में से निकले। दाएं हाथ से प्राइवेट पार्ट को नहीं छूना चाहिए, बुखारी 154, क्योंकि दाया हाथ खाने पीने का। इसी तरह दाएं हाथ से स्तंजा भी नहीं करना चाहिए, मुस्लिम 613 और बुखारी 154। हड्डी और मैंगनी से स्तंजा नहीं करना चाहिए, ढेलों से करना है। ये सब कुछ हम पूरी करके पूरी तरह फारिग होना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए, ना बिला वजह देर करनी चाहिए। और इसी तरह से जब बाहर निकलें तो क्या पढ़ेंगे, गुफरानका। किस बात पे गुफरानका? तेरी बख्शिश। वजह क्या की है? गुनाह करके आए हैं। उलमा कहते हैं कि ये गुफरानका क्यों? क्या अल्लाह इतनी देर तेरा जिक्र नहीं कर सकी? वॉशरूम में इंसान जिक्र नहीं कर सकता, तो इस पे अल्लाह से बख्शिश की तलब करता है एक इंसान। फिर इसी तरह बाहर निकलें तो दायां पांव बाहर रखें। और ये गुफरानका वाली जो हदीस है, ये बुखार अबू दाऊद की 30 और तिरमिजी 7। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला का शुक्र कीजिए कि उसने फारिग किया, ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। और फिर आखिरी चीज़ जिस पे इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को किसी हद तक पूरा ख़त्म करेंगे, वो है लिबास। क्या लिबास भी दीन का हिस्सा है? बिल्कुल से हिस्सा है। सूरत अराफ 31, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। ए औलाद आदम, हर इबादत के वक्त अपनी ज़ीनत इख्तियार करो। याद रखिए कि लिबास से इंसान का जिस्म ढकता है, अल्लाह की नेमत है। शौहर को बीवी का और बीवी को शौहर का लिबास कहा, अंतुम लिबासुल्लहुन्ना वहुन्ना लिबासुल्लकुम। और वो तकाबुल आप सुन चुके हैं कि क्यों लिबास इंसान के ऐब छुपाता है और उसके लिए। इसी तरह सूरत आराफ 26, लिबास खूबसूरत भी हो सकता है। या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। दो मकासद है, युवारी सौआतिकुम वरीशा, सतर को ढांपे और जीनत भी हो। तो लिबास के दो बड़े मकासद हैं। मैं इसमें एक तीसरा अपने तरफ से डाल देती हूँ जिससे बात समझती है कि लिबास इंसान को हैवान से मुमताज करता है। जानवर कपड़े नहीं पहनते, इंसान कपड़े पहनते हैं। ये जो डार्विनिज्म के थ्योरी के ज़रिए बेहयाई और औरियानी फैलाएगी, इसकी एक बहुत बड़ी पीछे वजह ये भी थी, एक दफ़ा इंसान को जानवरों की औलाद कह दो तो फिर हम कहेंगे जानवर कपड़े नहीं पहनते तो हम क्यों पहने। नेचुरल ड्रेस, जिस हाल में दुनिया में आए थे उसी में रहते। फिर इसी तरह से जानवर शादी नहीं करते तो हमें शादी की ज़रूरत नहीं, वहाँ फ्री सेक्स है तो इधर है। जानवर भी अपने बच्चों का किसी हद तक तो ख्याल रखते हैं लेकिन माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, तो हमें भी बच्चों को तो देखना है लेकिन माँ बाप को पकड़ कर ओल्ड होम्स में डाल दें। तो वो जानवरों के साथ जोड़ने के पीछे एक पूरा एंटी इस्लामिक लाइफस्टाइल था। फिर इसी तरह से आप देखिए कि लिबास जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किस तरीके से आपको बताया कि पहली बात है कि लिबास को नेमत समझिए। कितने लोग हैं जिनके पास लिबास नहीं है? अल्लाह का हक है कि इंसान अपने आप को लिबास में रखे। बग़ैर लिबास के इंसान क्या है? गोश्त का एक पहाड़। गाय भैंस बकरी और एक नेकेड इंसान में क्या फ़र्क है? लेकिन आज किस तरीके से मत मारी जा रही है इंसानों की, स्मूदीस नेकेड, समझ गए होंगे, अमेरिका में रहते हुए तो है ना। ये मैंने जब मैं खुद हम रहते थे इधर नॉर्वे जाने से पहले, ये ब्रांड तब नहीं था। ये मेरे हाल पिछले 5-6 साल की पैदावार है। अभी चंद दिन पहले एक खाने का डब्बा था, कोई चीज़ थी तो मैं दिखा रही थी जो मेरे पास थी, क्या लिखा हुआ था उस पर, यही लफ्ज़ लिखा हुआ है। यानी खाने के ज़रिए से आपको फीलिंग्स दे रहे हैं, इट्स ओके, हर चीज़ को, यानी इस लफ्ज़ की हया ख़त्म हो गई। तो बहरहाल लिबास को नेमत समझिए। दूसरी बात है, लिबास में तवाज़ो होनी चाहिए। तिर्मिज़ी 2481, कीमती और फ़ख्रिया लिबास नहीं पहनने चाहिए जिसको देखकर दूसरों के अंदर बड़ा बनने का शौक पैदा हो। साफ सुथरे कपड़े हों, लिबास जूता साफ सुथरा हो, खूबसूरत भी हो सकता है। सही मुस्लिम 2465। और वह हदीस तो आपने सुनी हुई है ना कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। फिर शोहरत के लिबास से बचना चाहिए। ये कैसे होता है? दो तरह से, नोट कीजिएगा। देखिए, शोहरत का लिबास एक तो वही है जो आप फौरन समझे, फ़ख्र के लिए पहनना, अबू दाऊद 4029। लेकिन एक और लिबास है, फ़कीरों का लिबास, जाहिदों का लिबास, ख़ास लिबास, फटे हुए जान के पहन लेना। एक ख़ास लिबास ही इसलिए कि हमें लोग बहुत सादा समझें। तो दो तरह से आप बड़े बनते हैं लिबास में, एक बहुत फ़ख्रिया, दुनियादारों में फ़ख्र और एक बहुत नेक बनने के लिए एक ख़ास गेटअप में रहना, नॉर्मल, कभी अच्छा कभी बुरा, आम तौर पे रखिए। फिर मर्दों को रेशमी लिबास और सोना पहनना हराम है, औरतों के लिए हलाल है। बुखारी 5835। फिर इसी तरह मर्द के लिए अंगूठी, गले में चेन, सोने की घड़ी, रेशम के कपड़े हराम हैं, चाहे वो धुलाई क्यों ना हो जी, और चाहे वो ससुराल से क्यों ना आए हो। बिलीव मी, बुखारी की रिवायत है 5839, मुस्लिम 5429। 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने पिक्चर दिखाई, बिलीव मी, कि मुझे उसको देखकर जो तकलीफ़ हुई, और मैं सोच रही थी कि इसकी कसर है कि, और ये क्या वाकई रियल तस्वीरें हैं या लोगों ने क्रॉप करके बनाई हुई हैं। दुल्हन के कपड़े और उसका मैचिंग दुपट्टा दूल्हा के हाथ में और बाजुओं में, आप ज़रा सोचिए तो सही, क्या ये दीन का मजाक नहीं है? और दूल्हा गरारे में और लंबी सी शर्ट में, बिल्कुल 100% औरत का लिबास। तो मैंने उसके बाद देखकर क्या कहा या सोचा कि अब कुछ देर के बाद ये चलेगा तो फिर फिगर भी औरत के बनेंगे। औरत को जो जैसे सजते हैं, मर्द को तो वैसे वो नहीं सजेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। और अगली बात, मर्द औरतों के और औरतें मर्दों की तशबीह ना करें। बुखारी की रिवायत है 5885। इस पे मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगी, अगर ये माशाल्लाह आपको 10-12 से ज़्यादा ही छुट्टियाँ मिल रही हैं दिसंबर में, किताबुल लिबास है, तफीमुस सुन्ना सीरीज़ की, लिबास के मिसाइल हैं कुछ इस तरह का उसका नाम है, लंदन में हमने पढ़ी थी तकरीबन 2 साल पहले पूरी बुक, आप उसको सुन लीजिए। आप अपने शौक से सुन लें जितना सुनना चाहें, लेकिन आपके A to Z सारे सवालों का जवाब उसमें है। लेकिन क्या हमें ये मौजू सुनना और पढ़ना चाहिए? लोग हमारा क्या देखते हैं? लिबास ही तो देखते हैं। तो क्या पहन सकते हैं, क्या नहीं पहन सकते, इसमें बहुत तफसील से अल्हम्दुलिल्लाह वजाहत के साथ बातें हुई हुई हैं टॉपिक वाइज। फिर गैर मुस्लिमों के लिबास की मुशाबहत नहीं करनी चाहिए, मुस्नद अहमद 92 जिल्द नंबर 2। पाक कपड़े से बना हुआ लिबास होना चाहिए, नजासत जायज़ नहीं है तो नजस चीज़ नहीं, मसलन सूअर या कुत्ते की खाल के बने हुए कपड़े, ऐसी चीज़ों से इवॉइड करना चाहिए। फिर इसी तरह से 70 औरत का जो है या मर्द का जो है, कम से कम हिस्सा वो है कि जो ढपता है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि सिर्फ सतर ही छुपाया जाए। इश्तहा बढ़ाने वाला, जज्बात को भड़काने या बेहयाई को आम करने वाला लिबास नहीं पहनना चाहिए। सूरत अज़ाब 59, नूर 31। ना तंग हो इतना और ना बारीक हो, दो लफ्ज़ लिख लीजिए, शफाफ ना हो बस साफ ना हो। शफाफ मीन सी थ्रू और बस साफ स्ट्रेची, इतना खिंचा हुआ कि जिस्म का एक एक वसफ बयान हो जाए, पतली कमर, मोटी कमर, पतली टांगे, मोटी टांगे। देखिए, खाल के ऊपर एक खाल ही तो नहीं पहननी ना। अल्लाह ताला इंसान को जानवरों से अलग करना चाहता है। जानवरों के ऊपर अल्लाह ने एक रंग की खाल चढ़ा दी। अब जेबरा देख लीजिए, काला सफ़ेद है, ब्राउन सफ़ेद है, एक ही रंग है। आपको मुझे वैरायटी दी, तो अगर हम जिस्म के ऊपर फिर एक इतना बारीक और पतला लिबास पहन लें कि जो हमारे लिए यानी और भी ज़्यादा अट्रैक्शन का जरिया हो, तो वो नहीं पहनना चाहिए। अब इस एंगल पे हर एक सोचे। देखिए, जो कपड़े, जो लिबास आप घर में पहनते हैं वो बाहर नहीं पहन सकते, और जो लिबास शौहर के सामने पहन सकते हैं वो बाप भाई के सामने नहीं पहन सकते, और जो लिबास आप दूसरी औरतों में भी नहीं पहन सकते वो भी हदें हैं। ये पूरा टॉपिक उसमें डिटेल से है, मेरा लिया 4-5 दिन का हमारा वो पूरा सेशन गया था, वो सुनने के लायक है। फिर इसी तरह इतना लंबा कपड़ा औरत का पहनना कि उसके पीछे लटकता जाए, इजाज़त नहीं है। क्या बोलते हैं उसको, फर्शी, गरारे, टेल वाले कपड़े जायज़ नहीं है। इतना लंबा औरत पहने कि कदम छुप जाए और दुपट्टा ऐसा हो जो सर और गर्दन और सीने को छुपा ले। तिर्मिज़ी 1731, अबू दाऊद और सूरह नूर की आयत 31 ही ले लीजिए, उसमें सब कुछ आएगा। मर्दों का लिबास इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि टखनों से नीचे लटक रहा हो। बुखारी 5787। कमीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा लिबास थी, अबू दाऊद 4025। अमामा, यानी जो मर्द सर पे टोपी पगड़ी की तरह पहनते हैं, कुछ हिस्से को कंधों के दरमियान लटकाना मसनून है। तिर्मिजी 1736। कोई भी पहने लिबास तो दाईं तरफ से शुरू कीजिए, ये सुन्नत है। 1766 तिर्मिजी। कपड़े और जूते उतारते हुए बाईं तरफ से उतारने शुरू कीजिए। अब लिबास के अंदर कई चीज़ें हैं, मसलन आप देखिए कि जेवरात भी कई चीज़ों के जाहिर किए गए हैं। हमारे कल्चर में आप देखिए कि मर्द अमूमन जेवर नहीं पहनते सिवाय अंगूठी के। मर्द को सोने की अंगूठी नहीं पहननी, अगर पहननी भी पड़े कोई तो ऐसी धात हो जो चांदी सोने की ना हो कम से कम। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब नया कपड़ा पहने तो दुआ पढ़े, किसको आती है? अल्लाह के नबी जब कोई नया कपड़ा हासिल करते तो कमीज या पगड़ी वगैरह तो दुआ कर पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा लकल हम्दो, ए अल्लाह सारी तारीफ तेरे लिए है, अंत कसौतनी ही तूने मुझको ये पहनाया, अस्सलुका मिन खैरी ही मैं इसकी खैर का सवाल करता हूँ, वह खैरा मा सुनिया लहू और उसकी भी खैर जिसके लिए ये बनाया गया, वाउज़ुबिका मिन शर्री ही व शर्री मा सुनिया लहू और इसके शर से बचता हूँ और जिस शर पे ये हुआ। इसी तरह नया कपड़ा किसी को पहना देखे तो क्या करना चाहिए? नया जोड़ा कहाँ से लिया है, किस बुटीक का है, कितने का लिया है, ये करना चाहिए? और जलना चाहिए, कुड़ना चाहिए और शौहर को फोन करना चाहिए? नहीं, खुश हो। देखिए लिव एंड लेट टू लिव, जी और जीने दो। मोमिन हमेशा दूसरों को देखे खुश होता है। दुआ क्या देनी है? एल्बिस जदीदन एश वैश हमीदन व मुत शहीदन, इब्ने मादा 3558। तुम्हें नया लिबास, काबिले तारीफ जिंदगी और शहादत की मौत नसीब हो। कितना प्यारा दीन। और जब आप ये पढ़ेंगे करेंगे तो उसके बाद आप बताइए कि दिलों में कीने और बुग़्ज़ रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को दूसरों के लिए खोल दे। आप कुछ जनरल बातें सवाल कर लीजिए। किसी हद तक हमने ये सारी बातों को कोशिश की है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी पूरा हक नहीं अदा हुआ। अगर सारी बातों को खैर करें तो अपने आप को दूसरों के लिए खुशी का जरिया बनाएं। आपको मुझे अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत दूसरों के लिए काबिले बर्दाश्त, काबिले तारीफ बनानी चाहिए। ला दरर व ला दरार, ना तुम किसी को तकलीफ दो ना तुम्हें कोई तकलीफ दे। मिन हुस्न इस्लामी तरकुहु माला, यानी ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इंसानी आदाब में पढ़ेंगे। इस वक्त कुछ भी आप सवाल पूछ सकते हैं, जो मौजूद आज शुरू हुआ या इससे आगे पीछे, तो आई एम हेयर। जी आप
लिबास में कल्चर का बहुत ज्यादा
जी
असर होता है, तो फिर वैसे लिबास पहनने जाए नहीं, जैसे महाराष्ट्र में ज्यादातर अक्सर औरतें साड़ियां पहनती हैं।
देखिए दो चीज़ें बता दी इस्लाम ने, बल्कि तीन कर लीजिए। आम औरत के लिबास की हम बात कर लेते हैं ना, शफाफ और वसाफ, टाइट और सी थ्रू, और तीसरी चीज़ है तशब्बुह। तशब्बुह क्या होती है? जिससे रिजेम्बलेंस होती है। अब कुछ कपड़े कॉमन है, मतलब आप देखिए कि शलवार कमीज़ है, पाकिस्तानी औरतें भी पहनती हैं, इंडियन औरतें भी पहनती हैं, मेरा ख्याल है हिंदू औरतें भी पहनती हैं, सिख औरतें भी पहनती हैं। लंबा ड्रेस जिसको लॉन्ग ड्रेस कहते हैं, एक गोरे भी पहनते हैं और अरब औरतें भी पहनती हैं। इस्लाम ने इस पे आपको कोई एक लाइन नहीं खींच के दी, लेकिन कुछ लिबास ऐसे हैं जो किसी के मजहबी लिबास हैं, किसी का कोई ऐसा ड्रेस है कि जिसको आप एक खास सेंस समझते हैं कि वो पॉप का लिबास है, पादरी का लिबास है, प्रोहत का लिबास है, दासियों का लिबास है, उससे तो अवॉइड करना है। बाकी जहाँ सवाल है साड़ी का, ये दूसरे का, देख लीजिए कि उस लिबास को पहनकर जिस्म कितना छुपता है और कितना ढकता है, तो फिर उतना उसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए। देखिए लिबास व तकवा व खैर, अंदर हया होती है ना तो बाहर बंदे को अपने जिस्म की फिक्र लगती है। हर चीज़ फतवे की नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें तकवे की होती हैं। तकवा ले लीजिए, फतवा आपको फिर जो भी कहता है, ठीक है? और कोई बात? क्या आज के सेशन से आपको फायदा हुआ? और इस सब पे अमल कौन करेगा? एक दूसरे का नाम ले दें, मैं करूंगी। चलिए ठीक है जी। जदीदन, इल्बिस जदीदन, वो आप इसको जब रुकेंगे तो फिर अगले के साथ जोड़ेंगे तो उस वही उसूल है जो आम पढ़ने का है, इल्बिस जदीदन वैश हमीदन, लेकिन अगर रुकेंगे तो इल्बिस जदीदा, मोस्टली रुका नहीं जाता तो फिर साथ ही कंटिन्यू करते हैं। चलिए ठीक है। आज मैं सोच रही थी कि अगले सहाबी को ना शुरू करें क्योंकि टाइम थोड़ा है, आज का टॉपिक बहुत लंबा था इसलिए फिर मैंने इसको रोकना नहीं पसंद किया, लेकिन कुछ बातें सहाबा के अमूमी अखलाक से मुतल्लिक कर लीजिए। खड़े हो ना, कोई है आपको खड़ा करने वाला? क्योंकि आप खड़े होंगे, छुट्टी ना कर दूँ, 10 मिनट ही हैं, जल्दी निकल जाएंगे। ये नहीं हो सकता। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए कि थोड़ा सा अशरफ मुबशरा पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से उनको हमने अपनी ज़िंदगी में रोल मॉडल बनाना है। एक मिनट दीजिए, सिर्फ चंद मिनट ही सही लेके